आगे सबक देखिए भाई, वलना अन सरिकत मूजिबतुन लिल कतई फी नफसिहा वकद ज़हरत इंदल काजी बिहुज्जतिन शरईयतिन वही शहादतु रजुलैन अकीब खुसूमतिन मुअतबरतिन मुतलकन इज लिअतबारु लिहाजतिहिम इलल इस्तिरदाद फयुस्तौफल कतउ والمقصود من الخصومة إحياء حقه وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء فلم يعتبر। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर हम फसल पढ़ रहे थे, फसल फी कैफियत القطع व इस्बातिह। मैंने आपको बतलाया कि इस फसल के अंदर साहिब हिदाया कता का तरीका बतलाएंगे और नीस वो चीजें बयान करेंगे कि जो कता के इस बात के लिए जरूरी हैं, यानी कता की शराइत क्या है। तो वो शराइत अगरचे साहिब हिदाया सराहतन जिक्र तो नहीं फरमाते, लेकिन जो जो मसले साहिब हिदाया जिक्र फरमाते हैं उनसे वो शराइत वाजह तौर पर मफहूम होती हैं और उन्हें फिर उलमा ने बैन सतूर दर्ज फरमा दिया है। तो पहली शर्त हमने ये पढ़ी थी कि हाथ काटने की सूरत में उस चोर के पकड़ने का या चलने का जिनसे नफा फौत नहीं होना चाहिए, लिहाजा अगर चोर का बायां हाथ पहले से कटा हुआ है तो फिर दायां हाथ नहीं काटा जाएगा, वरना तो चोर का चीजों को पकड़ने का जिनसे नफा ही खत्म हो जाएगा। और नीज इसी तरह दायां हाथ काटना है तो चोर का दायां पांव पहले से कटा हुआ ना हो, इसलिए क्योंकि दायां पांव भी कटा हुआ है और आप दायां हाथ भी काट देंगे तो एक ही जानिब के हाथ और पांव कट गए तो अब चोर का चलने का जिनसे नफा ही खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बतलाया था कि अगर एक तरफ का पांव कटा हो और एक तरफ का हाथ कटा हो तो फिर भी इंसान चल लेता है, जिस तरफ का पांव कटा है उस तरफ वो लाठी पकड़ लेगा, लेकिन अगर उसी तरफ का हाथ भी कटा हुआ है तो अब लाठी पकड़ने की भी कोई सूरत ना रही, तो लिहाजा इंसान फिर चल ही नहीं सकता। तो ये पहली शर्त थी भाई। और साहिबे हिदाया ने आपको ये भी बतलाया कि अगर बाएं हाथ का अंगूठा कटा हुआ हो या बाएं हाथ की दो उंगलियां कटी हुई हो तो इस सूरत के अंदर भी दाएं हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि अंगूठा कटा हो या दो उंगलियां कटी हुई हो तो फिर पकड़ने की कुव्वत तकरीबन खत्म हो जाती है, और अगर बाएं हाथ की एक उंगली कटी हुई हो तो उसकी वजह से पकड़ने की कुव्वत पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लिहाजा उस सूरत में फिर दाया हाथ काटा जाएगा भाई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर हाकिम ने हद्दाद से कहा कि चोर का दाया हाथ काट दो और फिर उस हद्दाद ने चोर का बाया हाथ काट दिया, चाहे गलती से काटा हो चाहे जानबूझकर काटा हो, इमाम साहब के नजदीक दोनों सूरतों में हद्दाद पर कोई जमान नहीं आएगा, अलबत्ता उसको कुछ न कुछ तंबीह की जाएगी, थोड़ी बहुत सजा हाकिम उसे देगा ताकि वो आइंदा इस तरह न करे। तो ये तो इमाम साहब के नजदीक है कि हद्दाद पर जमान नहीं आएगा, चाहे हद्दाद जानबूझकर बायां हाथ काटे चाहे गलती से बायां हाथ काटे। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि अगर गलती से बायां हाथ काटा है फिर तो हद्दाद पर जमान नहीं, लेकिन अगर जानबूझकर बायां हाथ काटा है फिर हद्दाद पर जमान आएगा और उसको हाथ की दियत अदा करना पड़ेगी। जबकि इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हद्दाद चाहे गलती से बायां हाथ काटे चाहे जानबूझकर काटे, दोनों सूरतों के अंदर उस पर जमान आएगा, क्योंकि यह हुकूकुल इबाद का मसला है और हुकूकुल इबाद के अंदर जो गलती है वो माफ नहीं होती। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि यहां पर गलती से मुराद जो है वो इश्तिहादी गलती मुराद है, यानी हद्दाद ने आयत को देखा तो आयत के अंदर तो है फक्तउ अईदियहुमा, वहां तो दाएं हाथ की तसरीह नहीं है, वहां तो दाएं हाथ का जिक्र नहीं है, तो उसने सोचा कि चोर का कोई सा भी हाथ काटा जा सकता है हद के अंदर, चुनांचे यहां उसने बायां हाथ काट दिया तो इश्तिहाद के अंदर उससे गलती हुई। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुकूकुल इबाद के अंदर गलती भी हो जाए तो वो मुआफ नहीं है भाई। जबकि हम कहते हैं कि हद्दाद से इज्तिहाद के अंदर गलती हुई है, क्योंकि आयत के अंदर तो दाएं हाथ की तसरीह नहीं है, आयत के अंदर तो है फक्तउ अईदियहुमा, कि चोरी करने वाले मर्द और औरत का हाथ काट दो, तो इज्तिहाद के अंदर उससे गलती हुई है और इज्तिहाद के अंदर जो गलती होती है वो मुआफ होती है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि अगर इसने जानबूझकर बायां हाथ काटा है तो फिर जमान आएगा। वो फरमाते हैं वजह यह है कि अगरचे ये इज्तिहादी मसला है, यहां इज्तिहाद की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हद्दाद ने इज्तिहाद की वजह से यहां गलती नहीं की बायां हाथ काटने की, बल्कि उसने जानबूझकर जुल्म करते हुए बायां हाथ काटा है। उसको भी मसले का पता था कि दायां हाथ काटा जाएगा, लेकिन उसने जानबूझकर जुल्म करते हुए बायां हाथ काटा है, लिहाजा यह माफ नहीं होगा। बल्कि मुनासिब तो यह था कि यहां किसास आना चाहिए, कोई शख्स किसी का हाथ जानबूझकर काट दे तो किसास में उस मुजरिम का भी हाथ काटा जाता है, तो लिहाजा मुनासिब तो यह था कि इस हद्दाद का भी बायां हाथ काटा जाए बतौर किसास के, लेकिन शुबे की वजह से किसास साकित हो गया। और वो शुबा यह है कि नस के अंदर मुतलक हाथ का जिक्र है, वहां दाहिने हाथ का जिक्र नहीं है, तो इसकी वजह से शुबा आ गया। और शुबे की वजह से जैसे हद साकित हो जाती है, इसी तरह किसास भी साकित हो जाता है। तो किसास तो साकित हो गया शुबे की वजह से, लेकिन इसको जमान देना पड़ेगा इस बाएं हाथ के काटने का, क्योंकि इसने जुल्म किया है, जानबूझकर बायां हाथ काटा है भाई। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हद्दाद ने चाहे जानबूझकर बायां हाथ काटा है, चाहे गलती से बायां हाथ काटा है, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर जो हाथ बच गया है वो बेहतर है उस हाथ के मुकाबले में जिसको काट दिया गया। और ज़ाबता है कि अगर एक आदमी दूसरे की कोई चीज तलफ कर दे, लेकिन उस मालिक को उस चीज का इवज मिल जाए, या मालिक के पास उससे बेहतर चीज बाकी बच जाए उसकी वजह से, तो इस सूरत के अंदर ये इतलाफ भी ला इतलाफ की तरह है। यूं समझेंगे इस शख्स ने दूसरे का कोई नुकसान किया ही नहीं, जब नुकसान ही नहीं किया तो उस पर जमान भी नहीं आएगा। तो यहां पर भी हद्दाद ने अगरचे बायां हाथ काटा है, लेकिन बायां हाथ कटने की वजह से चोर का दायां हाथ बाकी बच गया, और वह दायां हाथ तो बेहतर है उस हाथ के मुकाबले में जिसको काट दिया गया। तो लिहाजा यहां इतलाफ भी ला इतलाफ की तरह है, लिहाजा हद्दाद पर कोई जमान नहीं आएगा, चाहे उसने जानबूझकर ये बायां हाथ काटा है, चाहे गलती से बायां हाथ काटा है। ये इसी तरह है जैसे एक आदमी के खिलाफ दो गवाह गवाही दें कि इसने अपनी चीज जो है इतने माल के अंदर फलां को बेच दी है, यानी उसी चीज के कीमत के बकदर कम अज कम वो माल को जिक्र करें, और फिर वो चीज उस मालिक के हाथ से निकल गई, अलबत्ता उसको उसका इवज मिल गया। बाद में इन गवाहों में से कोई एक या दोनों गवाह रुजू कर लेते हैं, तो इस सूरत में इन पर जमान नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने मालिक का कोई नुकसान नहीं किया, मालिक की चीज तो उसके हाथ से निकल गई लेकिन उसका इवज यानी उसकी कीमत उसे मिल चुकी है भाई। और फिर साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि काजी जब चोर का दायां हाथ काटने का हुक्म दे दे, तो उसके बाद अगर गैर हद्दाद यानी कोई और आदमी भी चोर का बायां हाथ काट दे तो उस पर भी जमान नहीं आएगा, क्योंकि जब उसने बायां हाथ काट दिया तो अब चोर का दायां हाथ नहीं काटा जाएगा, वरना तो चोर के चीजों को पकड़ने का जिनसे नफा ही खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा इस आदमी ने अगरचे गलत किया, लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ चोर के लिए दायां हाथ बच गया जो बाएं हाथ से बेहतर है भाई। और साहिब हिदाय ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि हद्दाद जब चोर का हाथ काटने लगा तो चोर ने अपना बायां हाथ आगे कर दिया कि यह है मेरा दायां हाथ, और हद्दाद ने भी जल्दी से काट दिया। तो इस सूरत के अंदर भी हद्दाद पर कोई जमान नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि उसने चोर के कहने पर उसका हाथ काटा है भाई। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि अगर हद्दाद से इज्तिहादी गलती हुई और उसने बायां हाथ काट दिया, तो उसने ये जो हाथ काटा है ये बतौर हद ही के काटा है, लिहाजा इस सूरत में माल का जमान साकित हो जाएगा, क्योंकि कता और जमान हमारे नजदीक जमान नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसके बजाय हद्दाद से गलती हो गई, उसको दाएं बाएं की पहचान में गलती हो गई और उसने बायां हाथ काट दिया, तो ये बायां हाथ काटना ये तो हद नहीं है, लिहाजा इस सूरत के अंदर ये हाथ का कटना हद होकर वाकई नहीं हुआ, लिहाजा जमान साकित नहीं होगा, चोर को उस माल का जमान भी देना पड़ेगा अगर वो माल उसके पास हलाक हो चुका है। भाई ये इसी तरह अगर हद्दाद को मसले का पता था कि दायां हाथ काटना है, फिर भी उसने जानबूझकर जुल्म करते हुए बायां हाथ काट दिया, तो इस सूरत के अंदर भी ये जो हाथ का काटना है ये हद नहीं। जब ये हद नहीं है तो अब जमान भी साकित नहीं होगा, चोर को माल का जमान देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि चोर का हाथ उसी सूरत में काटा जाएगा जब मसरूक मिनहु खुसूमत करे, यानी जिससे चोर ने माल चोरी किया था वो खुसूमत करे। तो मालूम हुआ खुसूमत का करना शर्त है कता के लिए, अगर खुसूमत है तो फिर चोर का हाथ काटा जाएगा, अगर खुसूमत नहीं तो चोर का हाथ भी नहीं काटा जाएगा। तो मालूम हुआ ये कता की दूसरी शर्त है। भाई कता की पहली शर्त क्या थी कि हाथ काटने की वजह से चोर के चीजों को पकड़ने का या चलने का जिनसे नफा खत्म नहीं होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि चोर का हाथ तब काटा जाएगा जब खुसूमत हो, चाहे मालिक खुसूमत करे चाहे उसका कोई नाइब खुसूमत करे। भाई और फिर उसके बाद साहिबे हिदाय ने यह भी बतलाया था कि जिस वक्त चोर का हाथ काटा जा रहा हो उस वक्त भी मसरूक मिनहू का हाजिर होना जरूरी है, अगर उस वक्त भी मसरूक मिनहू हाजिर ना हुआ तो फिर चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। वजह यह कि आप पढ़ चुके हैं हुदूद के अंदर इम्जा यानी हद को नाफिज करना यह भी बाकायदा कजाए काजी का हिस्सा है, यह काजी के फैसले का हिस्सा है। तो जैसे काजी के फैसले के लिए खुसूमत जरूरी थी, इसी तरह यहां पर इम्जा के लिए भी खुसूमत जरूरी है कि मसरूक मिनहू वहां पर हाजिर हो। गई तो गोया ये तीसरी शर्त हो गई कता के लिए कि कता के वक्त मसरूक मिनहू का हाजिर होना शर्त है। भाई और फिर साहिब हिदाया ने बयान फरमाया था कि कौन कौन लोग खुसूमत कर सकते हैं। मैंने आपको बतलाया था कि जो उस माल का मालिक है वो भी खुसूमत कर सकता है, इसी तरह अगर वो शख्स जिसके पास माल बतौर अमानत के है यानी वो अमीन है उस माल के सिलसिले में तो वो भी खुसूमत कर सकता है अगर माल चोर ने उससे चुराया है। और तीसरा शख्स जो है वो जामिन है, वो शख्स कि अगर वो माल वापस नहीं करेगा तो उसको जमान देना पड़ेगा, तो ये जामिन जो है ये भी मालिक का नाइब है, ये भी खुसूमत कर सकता है। तो जो अमीन है वो भी मालिक का नाइब, जो जामिन है वो भी मालिक का नाइब। मालूम हुआ खुसूमत या मालिक कर सकता है या मालिक का नाइब, चाहे वो अमीन हो चाहे जामिन हो। लेकिन अगर कोई शख्स न उस माल का मालिक है न अमीन है न जामिन है तो फिर इस किस्म का शख्स खुसूमत नहीं कर सकता। भाई तो चुनाचे साहिब हिदाया ने बतलाया कि वो शख्स जिसके पास अमानत रखवाई गई थी यानी वो मुस्तौदा है, यूं कहो मुदा है, मुदा जिसके पास अमानत रखवाई जाए, मुस्तौदा भी वो शख्स जिसके पास अमानत रखवाई जाए, तो अगर मुस्तौदा से किसने माल चोरी कर लिया तो मुस्तौदा खुसूमत कर सकता है। इसी तरह गासिब है जो किसी का माल छीन कर ले गया, उससे किसने माल चोरी कर लिया तो गासिब भी खुसूमत कर सकता है। इसी तरह साहिब रिबा है कि एक शख्स ने दूसरे को 10 आला दिरहम दिए और उससे 20 अदना दिरहम ले लिए तो यह साहिब रिबा है, यह सूदखोर है, इससे वो दिरहम किसी ने चोरी कर लिए तो यह साहिब रिबा भी खुसूमत कर सकता है। भाई और इसी तरह मुस्तईर जो है जो किसी से आरियतन चीज मांग कर ले गया है इस्तेमाल के लिए, उससे अगर किसी ने वो चीज चोरी कर ली तो मुस्तईर भी खुसूमत कर सकता है। इसी तरह मुस्ताजिर जो है किराए पर चीज लेने वाला, उससे अगर चीज किसने चोरी कर ली तो वो भी खुसूमत कर सकता है। इसी तरह जो मुजारिब है जिसके साथ किसी ने अक़्द मुजारबत किया है और माल दूसरे का है और ये तिजारत कर रहा है तो ये मुजारिब जो है इससे अगर किसने वो माल चोरी कर लिया तो ये मुजारिब भी खुसूमत कर सकता है। इसी तरह मुस्तबज़ जो है, मुस्तबज़ वो है जिसको किसने माल बतौर सरमाए के दिया है कि मेरे माल को भी अपने माल के साथ तिजारत में लगाएं और मेरे हिस्से का जो नफा है वो मुझे दे दिया करें। तो ये जो मुस्तबज़ा है यानी जिसने माल को तिजारत के अंदर सरमाया बनाया है, इससे भी अगर वो माल कोई चोरी कर लेता है तो ये खुसूमत कर सकता है। इसी तरह काबिज आला सौमी शिरा यानी खरीदने के भावताओं पर जो चीज पर कब्जा कर लेता है, मसलन आप गाड़ी बेचना चाहते हैं और जैद गाड़ी खरीदना चाहता है, आप दोनों के दरमियान उस गाड़ी की खरीदो फरोख्त के बारे में बातचीत चल रही है, अभी बात पूरी नहीं हुई, बैतम नहीं हुई कि जैद ने कहा कि बाकी बातें हम कल कर लेंगे, मैं इस वक्त जा रहा हूं, मुझे कोई काम है, आप यूं करें ये गाड़ी फिलहाल मुझे दे दें, कल हम बाकी बातें कर लेंगे और बै पूरी कर लेंगे, तो ये जो जैद गाड़ी ले गया, ये जो इसने मबीए पर कब्जा कर लिया भावताओं की शर्त पर, भावताओं की शर्त पर इसने कब्जा किया है कि वह खरीदना चाहता है इसको, तो ये जो काबिज आला सौमी शिरा है इसके पास अगर ये मबिया जाया हो गया तो इस आदमी को जमान देना पड़ेगा। तो मालूम हुआ ये काबिज आला सौमी शिरा जो है ये जामिन होता है, तो इससे अगर कोई शख्स गाड़ी चोरी कर ले तो ये भी खुसूमत कर सकता है। इसी तरह मुर्तहिन जो है जिसके पास कोई शख्स अपनी चीज रहन रखवाता है कर्ज के बदले में, तो मुर्तहिन से अगर कोई वो रहन चोरी कर ले तो मुर्तहिन जो है वो भी खुसूमत कर सकता है। इसी तरह किसी भी शख्स का हिफाजत वाला कब्जा हो उस चीज पर, वो तमाम लोग खुसूमत कर सकते हैं भाई। और इन तमाम सूरतों के अंदर मालिक भी खुसूमत कर सकता है, चीज तो चोरी हुई है उस अमीन से या उस जामीन से, ये जो ऊपर जिक्र हो गए, लेकिन मालिक भी खुसूमत कर सकता है। सिर्फ रहन के मसले में राहिन के खुसूमत के लिए दो शर्तें हैं, वो तमाम सूरतों में खुसूमत नहीं कर सकता, वो जो राहिन है, वो जो उस रहन का मालिक है, उसकी खुसूमत के लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि वो रहन अभी भी मौजूद हो, यानी वो हलाक न हुआ हो, चोर ने चोरी तो कर लिया है लेकिन उसने उसको जाया या हलाक नहीं किया, और दूसरी शर्त यह है कि राहिन वो कर्जा अदा कर दे मुर्तहिन को, तो अब राहिन खुसूमत कर सकता है भाई। और मैंने आपको यह भी बतलाया कि उलमा फरमाते हैं कि यहां पर हिदाया के नुस्खे मुख्तलिफ हैं, बाद नुस्खों के अंदर है कि राहिन जो है कर्ज की अदायगी से पहले भी खुसूमत कर सकता है और कर्ज की अदायगी के बाद भी खुसूमत कर सकता है, लेकिन सही नुस्खा यही है जो यहां पर दर्ज किया गया कि राहिन कर्ज की अदायगी के बाद खुसूमत कर सकता है, कर्ज की अदायगी से पहले खुसूमत नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि ये जितने लोग हमने जिक्र कर दिए इनमें से कुछ अमीन हैं और कुछ जामिन हैं, ये सब खुसूमत कर सकते हैं, लेकिन इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्लाह वो इसमें इख्तिलाफ करते हैं। वो फरमाते हैं कि ये लोग जो हैं, ये जो अमीन है या जामिन है, ये कता के लिए खुसूमत नहीं कर सकते, ये चोरी के मामले में खुसूमत नहीं कर सकते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तो अपने जाब्ते पर चले हैं, उनका जाब्ता है कि ये जो अमीन और जामिन जिक्र हुए इनको चीज वापस लेने के लिए खुसूमत का हक है ही नहीं, इन लोगों को सिरे से खुसूमत का हक ही नहीं है। मालिक तो खुसूमत कर सकता है लेकिन ये तो चीज के मालिक नहीं, लिहाजा इनको खुसूमत का हक ही नहीं है। जब इनको खुसूमत का हक नहीं है तो चोर का हाथ कटवाने के लिए तो खुसूमत जरूरी होती है, तो ये लोग खुसूमत ही नहीं कर सकते भाई। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग जो जिक्र हुए ये खुसूमत तो कर सकते हैं, इनको शरीयत ने खुसूमत का हक तो दिया है, लेकिन वो हक शरीयत ने इनको दिया इनकी हाजत और जरूरत की वजह से कि ये चीज की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। ये जितने लोग जिक्र हुए ये सब उस चीज की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, तो उस चीज की हिफाजत के लिए शरीयत ने इनको खुसूमत का हक दे दिया। तो मालूम हुआ इनको जो खुसूमत का हक मिला है वो जरूरत की वजह से मिला है, और आपने जाब्ता पढ़ा है अजरूरी या तकद्दर बिकद्र जरूरत ही, कि वो चीज जो जरूरत की वजह से साबित होती है वो बकदरे जरूरत ही साबित होती है, तो इनको इस चीज की हिफाजत के लिए खुसूमत की जरूरत थी तो शरीयत ने खुसूमत की इजाजत दे दी, तो हिफाजत के लिए खुसूमत की इजाजत मिल गई, लिहाजा ये खुसूमत कता के मामले में नहीं, हाथ कटवाने के मामले में जाहिर नहीं होगी, हाथ कटवाने के लिए यह खुसूमत मुअसर नहीं होगी, इस खुसूमत की वजह से हाथ नहीं काटा जा सकता। और नीज इसलिए भी क्योंकि अगर ये चोरी के अंदर भी इनको खुसूमत का इख्तियार मिल जाए तो फिर तो चोरी की वजह से चोर का हाथ काटा जाएगा, और जब चोर का हाथ काटा जाएगा फिर तो उस माल की इस्मत साकित हो जाएगी, वो माल महफूज ना रहा, वो माल मुहतरम ना रहा। तो शरीयत ने इजाजत दी थी हिफाजत के लिए, और हाथ कट जाएगा फिर तो चीज महफूज ही न रही, वो तो हिफाजत ही खत्म हो जाएगी क्योंकि उसकी इस्मत साकित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वलना अन्न सरीकत मूजिबतुन लिल कतफी नफसिहा वकद जहरत इंदल काजी बिहुज्जतिन शरईयतिन वही शहादतु रजुलैन अकीब खुसूमतिन मुअतबरतिन मुतलकन। अब हम जवाब दे रहे हैं, याद रखो इसी जवाब के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह को भी जवाब हो जाएगा और इमाम जुफर रहमतुल्लाह को भी जवाब हो जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि इन लोगों को खुसूमत का हक ही नहीं है, ये चीज को वापस लेने का हक ही नहीं रखते क्योंकि ये उस चीज के मालिक नहीं है। और जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग खुसूमत कर तो सकते हैं लेकिन उस चीज को वापस लेने के लिए खुसूमत कर सकते हैं, इनकी इस खुसूमत की वजह से चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। बात समझ में आ गई। तो हम कहते हैं कि ये जो चोर ने चोरी वाला फेल किया है, चोरी का फेल अपनी जात के एतबार से ही तकाजा करता है कि इस चोर का हाथ काट दिया जाए, कि इसने खुफिया तौर पर माल महफूज को हिर्स से चोरी किया है, लिहाजा उसका यह फेल ही तकाजा करता है कि चोर का हाथ काट दिया जाए। लेकिन चोर का हाथ उस वक्त तक नहीं काटेंगे जब तक काजी के पास ये चोरी जाहिर ना हो जाए, वरना खुद ये फेल ही तकाजा कर रहा है इस चोर का हाथ काट दिया जाए। बाकी इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन लोगों को खुसूमत का हक ही नहीं है, या इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं इनको खुसूमत का हक तो है लेकिन यह हक इनको शरीयत ने जरूरत की वजह से दिया है, लिहाजा कता के सिलसिले में इनकी यह खुसूमत जाहिर नहीं होगी। हम कहते हैं नहीं, ये लोग जो हैं इन लोगों का हक बनता है कि इस चीज को चोर से वापस ले लें खुसूमत करके, ताकि मालिक को उसका हक लौटा सकें। हमारे नजदीक इन लोगों को हक है। ये जो पीछे लोग जिक्र हुए मुस्तईर मुजारिब वगैरह जितने भी थे, इन लोगों का ये हक बनता है कि ये उस चीज को वापस ले लें ताकि मालिक का हक अदा कर सकें। अगर उसने अमानत दी थी तो अमानत उसको वापस लौटा सकें, और अगर ये चीज इनके पास बतौर जमानत के थी तो ये मालिक को वापस करके अपने ऊपर से जमान को साकित कर दें। तो उस चीज को वापस लेना इनका हक है, और जब एक चीज किसी का हक हो तो शरीयत उसको खुसूमत का इख्तियार देती है, तो लिहाजा ये लोग खुसूमत कर सकते हैं क्योंकि उस चीज को वापस लेना इनका हक बनता है। भाई उस चीज को वापस लेना इनका हक है और हक के लिए ही तो खुसूमत की जाती है, तो इन लोगों को खुसूमत का हक होगा। तो देखो इससे इमाम शाफी रहमतुल्लाह का रद्द हो गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे, इन लोगों को खुसूमत का हक ही नहीं है। हम कहते हैं नहीं, ये उस चीज को वापस लेने के मोहताज हैं ताकि अमानत अदा कर सकें या अपने ऊपर से जमान को साकित कर सकें। भाई अमानतदार के पास अमानत हलाक हो जाए उस पर तो जमान नहीं आता अगर उसने कोई कोताही नहीं की, लेकिन जिस शख्स के पास माल बतौर जमानत के है अगर उसके पास वो माल हलाक हो जाए तो उस पर जमान आता है। तो चाहे अमीन है चाहे जामिन है, दोनों मोहताज हैं इस बात के कि इस माल को वापस लें ताकि मालिक का हक अदा कर सकें उसको वो चीज वापस करके। मालूम हुआ उस चीज को वापस लेना इन लोगों का हक है, और खुसूमत अपने हक ही के लिए तो की जाती है। मालूम हुआ इन लोगों को खुसूमत का भी हक है, और ये खुसूमत मुतलकन मुअतबर है, यानी ये जो इनकी खुसूमत है ये जरूरत की वजह से नहीं है बल्कि इनके अपने हक की वजह से है। जब इनके अपने हक की वजह से खुसूमत है तो ये हर एतबार से मुअतबर है। भाई जब ये खुसूमत हर एतबार से मुअतबर है तो इन्होंने खुसूमत कर दी, काजी के पास चले गए और इन्होंने दो गवाह पेश कर दिए, तवज्जो है। और ये खुसूमत जो हर एतबार से मुअतबर है, जब इन्होंने माल के लिए खुसूमत की और दो गवाह पेश कर दिए तो वो चोरी का फेल भी जाहिर हो गया। वो चोरी वाला फेल भी जाहिर हो गया, और वो चोरी का फेल तो खुद अपनी जात के एतबार से ही तकाजा कर रहा था कि इसका हाथ काटा जाए। तो लिहाजा जब काजी के पास चोरी का फेल जाहिर हो गया दो गवाहों की वजह से, तो लिहाजा अब काजी बतौर अल्लाह के हक के हुक्म देगा कि इस चोर का हाथ काटा जाए। तवज्जो है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे, इन लोगों को खुसूमत का हक ही नहीं। हमने कहा नहीं, इनको हक है कि उस चीज को वापस लें ताकि मालिक को उसका हक अदा कर सकें। और नीज इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इनको जो शरीयत ने खुसूमत का हक दिया है वो जरूरत की वजह से दिया है, और जो चीज जरूरत की वजह से साबित हो वो बकदरे जरूरत ही साबित होती है, लिहाजा कता के हक में ये खुसूमत जाहिर नहीं होगी, इस खुसूमत की वजह से चोर का हाथ नहीं कटवाया जा सकता। लेकिन हम कहते हैं कि ये जो इन्होंने खुसूमत की है ये इसलिए की है ताकि उस माल को वापस लेकर मालिक का हक अदा कर सकें। तो ये जो खुसूमत कर रहे हैं अपने हक की वजह से कर रहे हैं, और खुसूमत अपने हक के लिए ही तो की जाती है, और जब अपने हक के लिए खुसूमत की जाए तो वह हर एतबार से मोतबर होती है। जब यह खुसूमत हर एतबार से मोतबर है तो हाथ काटने के सिलसिले में भी मोतबर होगी। इस खुसूमत की वजह से जब ये दो गवाह पेश करेंगे तो काजी के पास वो चोरी भी जाहिर हो गई। जब चोरी जाहिर हो गई तो चोरी के अंदर फिर अल्लाह का हक है कि चोर का हाथ काटा जाए, तो लिहाजा काजी चोर का हाथ काटने का भी हुक्म देगा। बात समझ में आ गई। और बाकी इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इनको शरीयत ने जो इजाजत दी है खुसूमत की वो जरूरत की वजह से दी है, लिहाजा ये खुसूमत हाथ काटने के सिलसिले में जाहिर नहीं होगी, इसलिए क्योंकि अगर हाथ काटने के सिलसिले में ये खुसूमत जाहिर हो गई फिर तो चोर का हाथ काटना पड़ेगा, और जब चोर का हाथ काटना पड़ेगा तो इस माल की तो इस्मत साकित हो जाएगी, ये माल महफूज ना रहेगा। और शरीयत ने तो विलायत ही किस लिए दी थी, हिफाजत के लिए, और हाथ काट देंगे तो हिफाजत ही खत्म, माले महफूज ही न रहेगा। तो उसका भी साहिब हिदायत आगे जवाब देंगे। भाई पहले जरा ये देख लीजिए, तर्जमा देखिए भाई, वलना और हमारी दलील यह है कि अन सरिकता मूजिबतुन लिल कतई फी नफसिहा, कि चोरी जो है वो हाथ काटने को वाजिब करती है, फी नफसिहा अपनी जात के एतबार से, चोरी का फेल अपनी जात के एतबार से ही हाथ काटने को साबित करता है कि इस चोर का हाथ काट दिया जाए। वलाना और हमारी दलील यह है कि नसरिकता मूजिबतुन लिल कतई फी नफसिहा, कि चोरी जो है वो अपनी जात के एतबार से ही कता को वाजिब करने वाली है। वकद ज़हरत इंदल काजी बिहुज्जतिन शरईयतिन, और तहकीक चोरी काजी के पास जाहिर भी हो गई है, बिहुज्जतिन शरईयतिन एक हुज्जत शरईया की वजह से, वही शहादतु रजुलैनी और ये दो आदमियों की गवाही है, अकीब खुसूमत मुअतबरतिन मुतलकन एक ऐसी खुसूमत के बाद जो मुतलकन मुअतबर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे, इनको खुसूमत का हक नहीं। हमने कहा नहीं, इनको खुसूमत का हक है ताकि ये माल को वापस लें ताकि मालिक को वापस लौटा सकें। भाई तो मालिक के हक को जिंदा रखने के लिए ये मोहताज हैं कि माल को वापस ले लें और फिर मालिक को दे दें, तो लिहाजा इनको शरीयत ने खुसूमत का हक दिया है, और ये जो इनको खुसूमत का इख्तियार दिया है शरीयत ने ये इनके अपने हक की वजह से है। खुसूमत अपने हक ही के लिए तो की जाती है, तो माल को वापस लेना इन लोगों का हक है। जब अपने हक की वजह से इनको खुसूमत का इख्तियार मिला है तो ये खुसूमत हर एतबार से कामिल है और मुतलक है, लिहाजा कता के सिलसिले में भी ये खुसूमत जाहिर होगी। भाई तो कहते हैं वकद ज़हरत इंदल काजी बिहुज्जतिन शरईयतिन, और तहकीक ये चोरी काजी के पास भी जाहिर हो गई है एक हुज्जत शरईया के जरिए, वही शहादतु रजुलैन अकीब खुसूमतिन मुअतबरतिन मुतलकन, और ये दो आदमियों की गवाही है एक ऐसी खुसूमत के बाद जो मुतलकन मुअतबर है, यानी जरूरत की वजह से नहीं है बल्कि हर एतबार से यह खुसूमत मुअतबर है। इन्होंने खुसूमत उस माल को लेने के लिए की है लेकिन कता भी इससे जाहिर हो जाएगा। तो कहते हैं ये खुसूमत हर एतबार से मुअतबर है, इदिल एतबार उल हाजतिहिम इलल इस्तिरदादी। भाई ये खुसूमत हर एतबार से मुअतबर है, क्यों मुअतबर है, क्योंकि ये उस माल को वापस लेने के मोहताज हैं, ये उस माल को वापस लेने के मोहताज हैं, यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं इजी ले अतबारू, इसलिए क्योंकि इसका मोतबर होना यानी इस खुसूमत का हर एतबार से मोतबर होना लिहाजतिहिम, वो इन लोगों की हाजत की वजह से है, इलल इस्तिरदादी, उस चीज को वापस लेने के लिए ये लोग मोहताज हैं उस चीज को वापस लेने के लिए, तो इनकी खुसूमत मोतबर है, यानी ये अपने हक के लिए खुसूमत कर रहे हैं, और जब अपने हक के लिए खुसूमत कर रहे हैं तो वो हर एतबार से खुसूमत है भाई, ये जरूरत की वजह से नहीं है भाई। कहते हैं इदिल एतबारो, इसलिए क्योंकि इस खुसूमत का मोतबर होना लिहाजतिहिम, वो इन लोगों की हाजत की वजह से है, इलल इस्तिरदादी, उस चीज को वापस लेने के लिए, इन उस चीज को वापस लेने के लिए जो उनकी हाजत है उसकी वजह से ये खुसूमत हर एतबार से मोतबर है। फयुस्तौफल कतु, तो कता भी वसूल किया जाएगा। जब इन्होंने दो गवाह पेश कर दिए खुसूमत के अंदर, तो यह खुसूमत हर एतबार से जब मोतबर है तो कता के सिलसिले में भी मोतबर है, तो चोरी का फेल जाहिर हो गया, और चोरी का फेल ही तकाजा कर रहा था चोर का हाथ काट दिया जाए, तो जब काजी के पास भी वो फेल जाहिर हो गया इस गवाही की वजह से, तो अब क्या किया जाएगा, फयुस्तौफल कतु, उस कता को वसूल किया जाएगा, यानी चोर का हाथ काट दिया जाएगा। वल मकसूद मिनल खुसूमति इहया उहकी, और ये जो खुसूमत थी इसके जरिए मकसूद जो था इहया उहकी, वो मालिक के हक को जिंदा करना था जी। भाई ये लोग, ये जितने पीछे लोग जिक्र हुए इनमें से कोई अमीन है कोई जामिन है, लेकिन ये खुसूमत कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं, मकसद क्या है, ताकि मालिक के हक को जिंदा रख सकें, उस चीज को वापस लें और फिर मालिक को लौटा दें भाई। तो कहते हैं वल मकसूद मिनल खुसूमति इहया उहक ही, और इस खुसूमत के जरिए मकसूद जो है इहया उहक ही, वो मालिक के हक को जिंदा रखना है। वह सुकूतुल इस्मति जरूरतुल इस्तीफा फलम युतबर, यहां से वो इमाम जुफर रहमतुल्लाह का जवाब दे रहे हैं। इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन लोगों को खुसूमत का हक तो है, लेकिन चोरी के मामले में यह खुसूमत मोतबर नहीं, चोरी के मामले में यह खुसूमत मोतबर नहीं, इसलिए क्योंकि अगर यह खुसूमत चोरी के मामले में भी मोतबर हो जाएगी तो उसकी वजह से तो चोर का हाथ काटा जाएगा, और जब चोर का हाथ काटा जाएगा तो माल की इस्मत साकित हो जाएगी, वो माल महफूज ना रहेगा। हिफाजत के लिए ही शरीयत ने उनको खुसूमत की विलायत दी थी, और कता हो जाएगा तो हिफाजत ही खत्म हो जाएगी, वो माल महफूज ही ना रहेगा, उसका जमान ही चोर पर नहीं आएगा। तो लिहाजा ये खुसूमत हिफाजत के लिए तो मोतबर है, लेकिन हाथ काटने के सिलसिले में मोतबर नहीं। अब उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया, कि साहिब हिदाया फरमाते हैं कि हमने आपको बता दिया कि इनको खुसूमत का हक मुतलकन है, और इस खुसूमत से चोरी भी जाहिर हो गई, और चोरी की वजह से फिर चोर का हाथ काटा जाएगा भाई, और चोर का जब हाथ काट दिया जाता है तो फिर माल की इस्मत साकित हो जाती है, और ये जो माल की इस्मत साकित हुई ये हाथ काटने के साथ जरूरी है, जब भी चोर का हाथ कटेगा उसके साथ जरूरी है कि माल की इस्मत साकित हो जाए। यानी यूं कहो, ये जो माल की इस्मत या माल की हिफाजत साकित हो रही है ये जिमनन है जी। जब भी हाथ काटा जाएगा तो जिमनन माल की इस्मत भी साकित हो जाएगी, माल की हिफाजत भी साकित हो जाएगी, और वो चीज जो जिमनन साबित हो उसका एतबार नहीं किया जाता, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती। लिहाजा यहां पर भी जब चोरी जाहिर हो गई तो चोर का हाथ काट दिया जाएगा, और जब चोर का हाथ काटा जाएगा तो हाथ कटने के साथ जरूरी है कि माल की इस्मत भी साकित हो जाए, लेकिन माल की इस्मत जिमनन साकित हो रही है। असल मकसूद यहां यह नहीं था कि माल की इस्मत साकित की जाए, असल मकसूद तो था अल्लाह के हक को वसूल करना। जब अल्लाह के हक को हमने वसूल किया और चोर का हाथ काट दिया तो जिमनन माल की इस्मत भी साकित हो गई, लेकिन जो चीज जिमनन साबित हो उसकी तरफ नजर नहीं की जाती, उसका एतबार नहीं किया जाता। लिहाजा इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अगर यह खुसूमत जो है यह हाथ काटने के लिए भी जाहिर हो जाए फिर तो माल की इस्मत ही साकित हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि बेशक माल की इस्मत साकित हो जाए लेकिन इसकी तरफ नजर नहीं की जाएगी, क्योंकि जो माल की इस्मत साकित हो रही है ये जिमनन है, ये जिमनन है। यहां असल मकसद माल की इस्मत साकित करना नहीं है, बल्कि असल मकसद तो अल्लाह के हक को वसूल करना है, तो जिमनन अगर माल की इस्मत साकित भी हो जाए उसकी तरफ नजर नहीं की जाएगी, उसका कोई एतबार नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं वह सुकूतुल इस्मती जरूरतुल इस्तीफाई, और उस माल की इस्मत का साकित होना जरूरतुल इस्तीफाई। इस्तीफा का माना है वसूल करना, मुराद है कता को वसूल करना, यानी हद को वसूल करना, यानी हद को नाफिज करना। कहते हैं वह सुकूतुल इस्मती जरूरतुल इस्तीफाई, और माल की इस्मत का साकित होना जरूरतुल इस्तीफाई, वो हद के नाफिज होने की जरूरत है, वो हद के नाफिज होने के साथ जरूरी है। जब भी हद नाफिज करेंगे चोरी की तो माल की इस्मत साकित हो जाएगी। तो हद के नाफिज होने के साथ माल की इस्मत का साकित होना जरूरी है, यानी जब भी हद नाफिज की जाएगी तो जिमनन माल की इस्मत भी साकित हो जाएगी और जिमनी चीज का एतबार नहीं किया जाता। तो कहते हैं वह सुकूतुल इस्मत जरूरतुल इस्तीफाई, और माल की इस्मत का साकित होना जरूरतुल इस्तीफाई, वो इस कता के वसूल करने के लिए जरूरी है। फलम युतबर, लिहाजा इसका एतबार नहीं किया जाएगा, इस इस्मत के साकित होने का एतबार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह असल मकसूद नहीं है यहां पर। यहां तक बात समझ में आ गई। वला मोतबरा बिशुभतिन मोहूमतिल एतराज, यहां से साहिब हिदायत के एतराज का जवाब दे रहे हैं। भाई एतराज यह होता है कि ए साहिब हिदायत, आपने हमें मसला बताया कि ये जितने लोग पीछे जिक्र हुए, चाहे ये अमीन है चाहे ये जामिन है, इनकी खुसूमत से भी चोर का हाथ काट दिया जाएगा। तो अगर ये खुसूमत करते हैं और मालिक मौजूद नहीं,
जी।
मालिक मौजूद नहीं, तो फिर तो इनकी खुसूमत की वजह से चोर का हाथ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यहां शुबा आता है कि हो सकता है अगर मालिक मौजूद होता तो हो सकता है वो ये माल चोर को हिबा कर देता और चोर उस माल का मालिक बन जाता। और आगे आपको साहिब हिदायत बतलाएंगे कि अगर हाथ कटने से पहले चोर उस माल का मालिक बन जाए तो कता साकित हो जाती है, फिर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। तवज्जो है, एक चोर की चोरी काजी के पास साबित हो गई, काजी ने उसके हाथ काटने का हुक्म दे दिया, अभी हाथ नहीं कटा था कि मालिक ने वो चीज चोर को हिबा कर दी और उसके हवाले कर दी। आपने पढ़ा है कि हिबा के अंदर चीज दूसरे के हवाले की जाए तो फिर वो मालिक बनता है, सिर्फ जुबान से कहने से मालिक नहीं बनता। तो चोर का भी हाथ नहीं कटा था कि मालिक ने वो चीज चोर को हिबा कर दी और चोर के सुपुर्द भी कर दी, उसके कब्जे में भी दे दी, या मालिक ने वो चीज चोर को फरोख्त कर दी और चोर ने खरीद ली। तो देखो कथा से पहले ही चोर उस चीज का मालिक बन गया, और इस सूरत में याद रखो कता साकित हो जाती है, फिर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। तो यहां एतराज होता है कि ऐ साहिब हिदाया, ये जितने लोग जिनको आपने जिक्र किया ये खुसूमत कर सकते हैं, मालिक मौजूद नहीं है, इन्होंने खुसूमत कर दी और काजी ने चोर का हाथ काटने का हुक्म दे दिया, तो फिर भी चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि यहां शुबा मौजूद है और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। क्या शुबा मौजूद है? कि अगर मालिक होता तो शायद वो इस चोर को इस माल का मालिक बना देता, उस माल का मालिक बना देता, तो फिर इस सूरत में हद साकित हो जानी थी। तो मालूम हुआ यहां शुबे का इहतमाल मौजूद है, और जब भी शुबा आ जाए तो हद साकित हो जाया करती है। तो साहिब हिदायत आपको जवाब देंगे कि यह शुबा नहीं है बल्कि शुभ शुबा है, शुबे का शुबा है, ये शुबे का शुबा है। भाई देखो, अगर मालिक मौजूद होता और फिर वो इस चोर को मालिक बना देता, फिर शुबा आ जाता और हद साकित हो जाती, लेकिन इस वक्त तो मालिक भी मौजूद नहीं और चोर को उस चीज का उसने मालिक भी नहीं बनाया, तो इस वक्त तो शुबा नहीं है। हां, शुबे का सिर्फ इहतमाल है, अगर मालिक होता तो शुबा आ जाता, लेकिन इस वक्त तो शुबा नहीं। तो शुबा हो वो मोतबर होता है, शुबे का सिर्फ इहतमाल जो है वह मोतबर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो शुबे का इहतमाल मोतबर नहीं है, और इसी को शुभ शुभा कहते हैं, यानी शुबा होने का शुबा होना, शुबा होने का शुबा होता है। अगर मालिक होता तो शायद शुबा हो जाता, लेकिन जब मालिक नहीं है तो शुबा भी नहीं है, सिर्फ शुबा होने का इहतमाल है, यूं को सिर्फ शुबा होने का शुबा है, और शुबा तो मोतबर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वला मोतबरा बिशुबहतिन मोहूमतिल एतराजी, और कोई एतबार नहीं है ऐसे शुबे का मोहूमतिल एतराजी जिसके पेश आने का वहम हो। एतराज का क्या माना? पेश आना। तो कहते हैं वला मौता बारा भी शुबहतिन, और कोई एतबार नहीं है ऐसे शुबे का, मोहम्मत एतराजी के, जिसके पेश आने का वहम हो। भाई ये जो मुस्तईर या मुजारिब वगैरह पीछे गुजरे, इन्होंने खुसूमत कर दी, काजी ने चोर के हाथ काटने का फैसला कर दिया, खुद माल का असल मालिक मौजूद नहीं। अगर असल मालिक होता और वो चोर को मालिक बना देता फिर शुबा आ जाता, लेकिन इस वक्त तो मालिक मौजूद नहीं है, तो शुबा होने का वहम होता है, शुबा होने का एहतमाल होता है, और शुबा होने का एहतमाल या शुबा होने का वहम उसका कोई एतबार नहीं है। यह माना है वला मोतबरा भी शुबहतिन मोहूमतिल एतराजी, और कोई एतबार नहीं है ऐसे शुबे का जिसके पेश आने का वहम हो। शुबा पेश नहीं आया, हां पेश आने का वहम है। कमा इदा हजर अल मालिकु, जैसे कि मालिक हाजिर हो, वगाबल मुतमनु, और अमीन जो है वो गायब हो। मुतमन भाई ये इसमें मफूल का सीगा है भाई, एतमना यतमिनु, एतमान का माना है किसी को अमीन बनाना, यानी किसी के हवाले अमानत करना, तो अमानत देने वाला वो है मुतमिन, और जिसको अमानत दी है वो है मुतमन। साहिबे हिदाया फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे इन तमाम सूरतों में हमने आपको बताया कि ये अमीन और जामीन जो हैं ये खुसूमत कर सकते हैं, और ये जब खुसूमत कर लें फिर भी चोर का हाथ काटा जाएगा अगरचे मालिक मौजूद ना हो। या इसका बरअक्स कर लें, ये लोग जिनसे चोरी हुई ये तो मौजूद नहीं, लेकिन माल का असल मालिक आ गया, उसने खुसूमत कर दी। जब असल मालिक ने खुसूमत कर दी फिर भी चोर का हाथ काटा जाएगा, अगरचे यहां पर भी ये वहां मौजूद है, वो जो मसरूक मिनहू है वो आदमी जिससे चोरी हुई थी, वो जो अमीन या जामीन था, अगर वो होता हो सकता है वो कह देता कि इस चोर को तो मैंने खुद अपने घर आने की इजाजत दी थी, या ये चोर तो मेरे घर मेहमान आया था, जब मेहमान आया था तो हिर्ज ना रहा, जब हिर्ज ना रहा तो हाथ नहीं काटा जाएगा। तवज्जो है, तो जैसे तवज्जो से सुनो, जैसे ये जो अमीन और जामीन है, अमीन और ये जब खुसूमत करें और मालिक मौजूद नहीं है तो इस सूरत में हाथ काटा जाएगा, अगरचे शुबे का एहतमाल या वहम होता है, लेकिन शुबे का एहतमाल या वहम काफी नहीं बल्कि बाकायदा शुबा होना चाहिए। जब ये अमीन या जामीन खुसूमत करें और मालिक मौजूद नहीं है तो शुबे का एहतमाल तो है, शुबे का वहम तो है, लेकिन शुबे का वहम या एहतमाल काफी नहीं, बाकायदा शुबा हो तो फिर हद साकित होती है। या इसका बरअक्स कर लें, मालिक खुसूमत कर रहा है और वो अमीन और जामीन जिससे चोरी हुई थी वो मौजूद नहीं जी। तो इस सूरत में भी चोर का हाथ काटा जाएगा, अगरचे शुबे का एहतमाल या शुबे का वहम यहां भी मौजूद है कि वो अमीन या जामीन आ जाता और वो कहता कि इसको तो मैंने खुद घर के अंदर आने की इजाजत दी थी। तवज्जो है, तो मालूम हुआ चाहे खुसूमत मालिक करे फिर भी शुबे का एहतमाल है, चाहे वो अमीन या जामीन खुसूमत करे फिर भी शुबे का एहतमाल है, लेकिन शुबे के एहतमाल को नहीं देखा जाएगा, शुबे को देखा जाएगा, शुबा तो नहीं है यहां पर, लिहाजा हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं कमा इदा हजर अल मालिकु, जैसे कि मालिक हाजिर हो जाए, वगाबल मुतमनु, और गायब हो जाए वो शख्स जिसको अमीन बनाया गया था, फइन्नहु युक्ताउ बिखुसूमतिही, इसलिए क्योंकि मालिक की खुसूमत की वजह से भी चोर का हाथ काटा जाएगा, फी जाहिरे रिवायती, जाहिरे रिवायत में, व इन कानत शुभतुल इज्नी फी दुखूलिल हिर्ज साबितातन, व इन कानत शुभतुल इज्नी, अगरचे इजाजत का शुबा, फी दुखूलिल हिर्ज, हिर्ज के अंदर दाखिल होने में, हिर्ज के अंदर दाखिल होने में इजाजत का शुबा, कि उसने हिर्स के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी थी, वह इन कानत शुबहतुल इज्नी फी दुखूल हिर्जी, अगरचे हिर्स के अंदर दाखिल होने की इजाजत का जो शुबा है साबितन, वो साबित है। तवज्जो है, साहिब हिदाया पर एतराज होता था कि ये अमीन और जामीन जो हैं अगर ये खुसूमत करें तो चोर का हाथ नहीं काटना चाहिए क्योंकि मालिक मौजूद नहीं, और मालिक अगर होता तो शायद शुबा आ जाता। तो साहिब हिदाया ने बतलाया जैसे ये अमीन और जामीन की खुसूमत से हाथ काटा जाएगा, इसी तरह अगर सिर्फ मालिक खुसूमत करता और अमीन और जामिन मौजूद ना होते फिर भी जाहिर रिवायत के मुताबिक हाथ काटा जाएगा, अगरचे वहां पर भी शुबे का एहतमाल और शुबे का वहम मौजूद है, लेकिन शुबे के एहतमाल और वहम की तरफ नजर नहीं की जाएगी, उसका कोई एतबार नहीं। बात समझ में आ गई, तर्जमा एक दफा फिर देख लीजिए। कहते हैं वला मुअतबरा बिशुबहतिन मौहूमतिल एतराजी, और कोई एतबार नहीं है उस शुबे का जिसके पेश आने का वहम है। कमा इदा हजर अल मालिक वगाब अल मुतमनु, जैसे कि मालिक हाजिर हो जाए। देखो ये बरअक्स कर रहे हैं, पिछले मसले में खुसूमत करने वाले कौन थे, अमीन या जामिन, और मालिक मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा वहां शुबे का एहतमाल है। लिया इसका बरअक्स कर लें, मालिक खुसूमत कर रहा है और अमीन और जामिन गायब हैं, तो यहां भी शुबे का एहतमाल है, लेकिन इसमें भी हाथ काटा जाएगा भाई। कहते हैं कमा इदा हजर अल मालिक व गाब अल मुतमनु, जैसे कि मालिक हाजिर हो जाए और वो जिसको अमीन बनाया गया था वो गायब हो जाए। फइन्नहु युक्तौ बिखुसूमती ही फी जाहिर रिवायती, तो मालिक की खुसूमत की वजह से भी इस चोर का हाथ काटा जाएगा जाहिर रिवायत के मुताबिक। व इन कानत शुबहतुल इज्न फी दुखूल अल हिर्ज साबितन, अगरचे हिर्ज के अंदर दाखिल होने की इजाजत का शुबा इसमें भी साबित है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, व इन कुतिया सारिकुम बिसरिकतिन फसुरिकत मिन्हु फलम यकुल लहू वला लिरब्बिस सरिकति अन यक्ता सारिकस सानिया। सूरत मसला ये भाई, एक शख्स ने चोरी की और चोरी के अंदर इस चोर का हाथ काट दिया गया, और वो माल जो चोरी किया था वो अभी चोर के पास ही मौजूद है, इसने मालिक को वापस नहीं किया, कि एक और चोर आया और इस दूसरे चोर ने पहले चोर से वो माल चोरी कर लिया, तो क्या ये दूसरे चोर का अब हाथ कटवाया जा सकता है इस माल के अंदर या नहीं? इस माल के अंदर पहले चोर का हाथ काटा जा चुका है और फिर दूसरा चोर आया और उसने पहले चोर से यह माल चोरी कर लिया, तो क्या अब दूसरे चोर का हाथ काटा जा सकता है? क्या ये पहला चोर खुसूमत करके दूसरे चोर का हाथ कटवा सकता है, या ये जो माल का असल मालिक था क्या वो उस दूसरे चोर पर खुसूमत करके उसका हाथ कटवा सकता है? तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे नहीं, न ये पहला चोर खुसूमत करके दूसरे चोर का हाथ कटवा सकता है और न माल का मालिक खुसूमत करके दूसरे चोर का हाथ कटवा सकता है। भाई क्या वजह है, क्यों हाथ नहीं काटा जा सकता? कहते हैं वजह यह कि पहले चोर ने जब चोरी की थी वह माले महफूज था, और माले महफूज का चोरी करना यह खुद ही तकाजा करता है कि चोर का हाथ काट दिया जाए, और दूसरे चोर ने जब चोरी की है तो अब वो माले महफूज नहीं है। क्यों नहीं माले महफूज? क्योंकि पहले चोर का हाथ काटा जा चुका है, और आपने पढ़ा है कि जब चोर का हाथ काट दिया जाए तो उस माल की इस्मत साकित हो जाती है, वो माले महफूज ना रहा, तो दूसरा चोर जिस माल को लेकर गया वो माले महफूज नहीं था। जब वो माले महफूज नहीं था तो ये दूसरे चोर की चोरी ये हाथ काटने का सबब ही नहीं है, उसका ये वाला फेल, ये जो दूसरे चोर ने जो चोरी की है उसका ये फेल हाथ काटने का सबब ही नहीं, ये वाली चोरी हाथ काटने का तकाजा ही नहीं कर रही क्योंकि माल महफूज ही नहीं। पहली चोरी हाथ काटने का तकाजा कर रही थी क्योंकि वो माले महफूज था, लेकिन ये दूसरी चोरी में जो माल उसने चुराया है ये तो माले महफूज नहीं, तो ये फेल ही हाथ काटने का तकाजा नहीं कर रहा। इस माल की इस्मत साकित हो गई, ये माल महफूज ना रहा, मतलब यह है कि यह माल अब गैर मुतकविम बन गया है, इस माल की अब कोई कीमत ही नहीं, और जब इस माल की कोई कीमत ही नहीं तो इस दूसरी चोरी पर हाथ कैसे काटा जा सकता है? दूसरे चोर ने जो चोरी की है तो इस माल की तो कोई कीमत ही नहीं, ये तो गैर मुतकविम बन चुका है, तो इसके अंदर दूसरे चोर का हाथ कैसे काटा जा सकता है? भाई हाथ तो 10 दिरहम की चोरी में काटा जाता है और यह माल तो गैर मुतकविम है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है भाई। तो बात समझ में आ गई कि माल की इस्मत और हिफाजत साकित होने का मतलब यह है कि अब वो माल माले मुतकविम नहीं रहा। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन कुतिया सारिकुम बिसरिकतिन, और अगर किसी चोर का हाथ काट दिया गया बिसरिकतिन किसी चोरी की वजह से, फसुरिकत मिन्हु फिर इस पहले चोर से भी वो माल चुरा लिया गया, फलम यकुन लहू वला लिरब्बिस सरिकती, तो जायज नहीं है इस पहले चोर के लिए वला लिरब्बिस सरिकती और ना उस मसरूका माल के मालिक के लिए, अय्यक्ता सारिका सानिया के वो दूसरे चोर का हाथ काट दें। इनको ये हक नहीं है। लिअन्नल माल गैरु मुतकव्विमिन फी हक़ सारिकी, इसलिए क्योंकि ये जो माल है गैरु मुतकव्विमिन, ये गैर मुतकव्विम हो चुका है, इस माल की कोई कीमत नहीं है। फी हक़ सारिकी, पहले चोर के हक में, पहले चोर के हक में ये माल गैर मुतकव्विम हो चुका है, क्योंकि कता और जमान जमा नहीं हो सकते। और नीज ये भी याद रखना, पहले चोर के हक में भी यह माल गैर मुतकविम हो गया, इसकी कोई कीमत नहीं, और मालिक के हक में भी यह माल गैर मुतकविम हो गया, मालिक अब इसका जमान वसूल नहीं कर सकता। जब हाथ कट जाए तो फिर माल की इसमत साकित हो जाती है, मालिक भी उसका जमान वसूल नहीं कर सकता अगर वो माल चोर के पास हलाक हो चुका है। तवज्जो है। तो कहते हैं लिअन्नल माल गैर मुतकव्विमिन फी हक सारिकी, इसलिए क्योंकि ये माल जो है गैर मुतकव्विम हो चुका है, यानी इसकी कीमत खत्म हो चुकी है। फी हक सारिकी, पहले चोर के हक में, हत्ता ला यजिबु अलैहि ज़मानु बिल हलाकी, यहां तक कि इस पहले चोर पर इस माल का जमान भी वाजिब नहीं हो सकता, बिल हलाकी, इस माल के हलाक हो जाने की वजह से। जब उसका हाथ काट दिया गया है तो अब पहले चोर पर जमान भी वाजिब नहीं हो सकता। यहां भी याद रखना, हत्ता ला यजीबू, यह हत्ता नसब नहीं देगा, क्योंकि हत्ता के नसब के लिए मैंने बताया था दो शर्तें हैं। एक तो यह कि हत्ता का माबाद मुस्तकबिल होना चाहिए, हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और नीज वह हत्ता गाया या सबबियत का फायदा दे, तो यहां शर्तें पूरी नहीं, लिहाजा हत्ता के बाद नसब नहीं आएगा यहां पर। कहते हैं हत्ता ला यजिबु अलैहि ज़मानु बिल हलाकी, यहां तक कि पहले चोर पर जमान भी वाजिब नहीं होता इस माल के हलाक हो जाने की वजह से। फलम तन अकिद मुजिबतन फी नफसिहा, लिहाजा ये जो चोरी है ये मुनाकिद नहीं हुई मुजिबतन कि वो वाजिब करने वाली हो, यानी कता को, हाथ काटने को वाजिब करने वाली हो। फलम तन अकिद मुजिबतन, लिहाजा ये चोरी जो है कता को वाजिब करने वाली होकर मुनाकिद नहीं हुई। फी नफसिहा, अपनी जात के एतबार से, ये जो दूसरी चोरी है ये हाथ के कता को वाजिब करते हुए मुनाकिद नहीं, चोरी तो मुनाकिद हो गई, चोरी तो हो गई, लेकिन हाथ का कता इसकी वजह से वाजिब नहीं, क्योंकि ये उसने माले महफूज चोरी नहीं किया भाई। तो कहते हैं फलम तन आकिद मूजिबतन फी नफसिहा, लिहाजा ये जो दूसरी चोरी है ये कता का मूजिब होकर मुनाकिद नहीं हुई। वलिल अव्वली विलायतुल खुसूमति फिल इस्तिरदादि फी रिवायतिन लिहाजतिही इदिर रद्दु वाजिबुन अलैही। अच्छा भाई, ना तो मालिक इस दूसरे चोर का हाथ कटवा सकता है और ना पहला चोर जो है वो दूसरे चोर का हाथ कटवा सकता है, तो क्या माल वापस लेने के लिए खुसूमत कर सकते हैं? कहते हैं हां, मालिक जो है वो तो खुसूमत कर सकता है, बात जाहिर सी है क्योंकि माल उसका है, वो तो खुसूमत कर सकता है। क्या ये पहला चोर भी खुसूमत कर सकता है या नहीं? कहते हैं हां, एक रिवायत के मुताबिक पहला चोर भी खुसूमत कर सकता है, ताकि माल को उस दूसरे चोर से वापस ले ले और फिर मालिक को दे दे। तो कहते हैं वलील अव्वली विलायतुल खुसूमति फिल इस्तिरदादी, और पहले चोर को जो है खुसूमत की विलायत है फिल इस्तिरदादी, उस माल को वापस लेने में। फिर रिवायतिन, एक रिवायत के मुताबिक, लिहाजती ही, उसकी हाजत की वजह से, इसे रद्द वाजिबुन अलैही, इसलिए क्योंकि उस चीज को वापस करना इस पर वाजिब था, इस पहले चोर पर उस चीज को मालिक को लौटाना वाजिब था, तो वो पहला चोर मोहताज है कि वो उस चीज को वापस ले ले उस दूसरे चोर से, तो वो खुसूमत कर सकता है एक रिवायत के मुताबिक भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वलील अव्वली विलायतुल खुसूमति, और पहले चोर को खुसूमत की विलायत है फिल इस्तिरदादी, उस माल को वापस लेने के अंदर, यानी उस माल को वापस लेने के लिए वो खुसूमत कर सकता है। फिर रिवायत इन, एक रिवायत के मुताबिक, लिहाजत ही, अपनी हाजत की वजह से, कि यह पहला चोर मोहताज है उसको वापस लेने के लिए, इसे रद्द वाजिबुन अलैही, इसलिए क्योंकि यह माल मालिक को वापस लौटाना इस पहले चोर पर वाजिब है, तो यह खुसूमत कर सकता है एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत के मुताबिक यह खुसूमत नहीं कर सकता भाई। तो देखो, वो जो जाब्ता मैंने आपको बतलाया था कि खुसूमत या मालिक कर सकता है या मालिक का नाइब कर सकता है, और मालिक का नाइब कौन होता है, या अमीन है या जामिन है। तो खुसूमत सिर्फ तीन अफराद कर सकते हैं, मालिक या अमीन या जामिन। और ये जो पहला चोर है, ना ये मालिक है न ये अमीन है न ये जामीन है, इस पर जमान भी नहीं आता भाई, बात समझ में आ गई, तो लिहाजा ये खुसूमत नहीं कर सकता। आगे देखिए, वलौ सरका सानी कबल अन युक्ताल अव्वल औ बादमा दुरी अलहद बिशुबहतिन युक्ताउ बिखुसूमतिल अव्वल। भाई वही मसला चल रहा है भाई, पहले क्या सूरत थी कि पहले चोर का हाथ काट दिया गया, उसके बाद दूसरे चोर ने इससे माल चुरा लिया। अब सूरत यह है कि पहले चोर का भी हाथ नहीं कटा या उससे हद ही साकित हो गई किसी शुबे की वजह से, और दूसरा चोर वो माल चुराकर इससे ले गया, तो इस सूरत में याद रखो पहला चोर भी खुसूमत करके दूसरे चोर का हाथ कटवा सकता है, क्योंकि पहले चोर का भी हाथ नहीं कटा, जब हाथ नहीं कटा तो माल की इस्मत अभी तक साकेत नहीं हुई, तो दूसरे चोर ने जो माल चोरी किया वो माले महफूज चोरी किया, माले मासूम चोरी किया, और माले मासूम की चोरी के अंदर तो हाथ काटा जाता है, लिहाजा ये पहला चोर भी खुसूमत करके दूसरे चोर का हाथ कटवा सकता है, क्योंकि अभी तक माल की इस्मत साकेत नहीं हुई। कहते हैं वलौ सरका सानी, और अगर दूसरे चोर ने चोरी कर ली कबल अन युक्ताल अव्वलु, पहले चोर के कता से पहले ही, यानी पहले चोर का भी हाथ नहीं काटा गया था कि दूसरे चोर ने चोरी कर ली, औ बादमा दूरी अल हद बिशुबहतिन, या दूसरे चोर ने चोरी कर ली बाद इसके कि जब हद साकित हो गई थी किसी शुबे की वजह से, पहले चोर से हद साकित हो गई थी किसी शुबे की वजह से और दूसरे चोर ने वो माल उससे चोरी कर लिया, तो युक्ताउ बिखुसूमतिल अव्वली, तो इस सूरत के अंदर पहले चोर की खुसूमत की वजह से भी दूसरे चोर का हाथ काटा जाएगा। वजह यह कि वो अभी भी जामिन है भाई, वो अभी भी पहला चोर जामिन है, माल मजमून है भाई, और उसकी चोरी में तो हाथ काटा जाता है। तो कहते हैं युक्ताउ बिखुसूमतिल अव्वली, तो पहले चोर की खुसूमत से भी दूसरे चोर का हाथ काटा जाएगा, लिअन्ना सुकूत तकव्वुमी जरूरतुल कत्ई, इसलिए क्योंकि तकव्वुम का साकित होना, तकव्वुम का माना कीमत वाला होना, तकव्वुम का साकित होना यानी माल की कीमत का साकित होना, जरूरतुल कत्ई, यह कता की जरूरत है, हाथ काटने के साथ जरूरी है कि माल की कीमत साकित हो जाती है, यानी वो गैर मुतकव्विम बन जाता है, और अभी तक तो पहले चोर का हाथ कटा नहीं, लिहाजा माल अभी भी मुतकव्विम ही है। कहते हैं लिअन्न सुकूत तकव्वुमी जरूरतुल कत्ई, इसलिए क्योंकि माल की कीमत का साकित होना जरूरतुल कत्ई, ये कता के साथ जरूरी है, वलम यूजद, और हाल यह है कि कता तो नहीं पाई गई, फसारकल गासिबी, तो ये पहला चोर गासिब की तरह हुआ
जी।
याद रखो जब तक चोर का हाथ नहीं काटा गया चोर को इस माल का जमान देना पड़ेगा अगर वो माल उसके पास हलाक हो गया। तवज्जो है, अगर एक चोर माल चोरी करके ले जाए तो इस चोर पर इस माल का जमान है, चाहे ये माल ये खुद हलाक करे चाहे इसके पास खुद ही हलाक हो जाए माल
जी।
दोनों सूरतों में इस चोर को जमान देना पड़ेगा, ये गासिब के दर्जे में है, किसके दर्जे में, गासिब के दर्जे में है। हां जब इसका हाथ कट जाएगा फिर जमान साकित हो जाएगा, तो हाथ कटने से पहले जमान साकित नहीं, और यूं कहो हाथ कटने से पहले ये चोर किसके दर्जे में है, गासिब के दर्जे में है, और गासिब के पास माल हलाक हो जाए तो उसको जमान देना पड़ता है, लिहाजा इसको भी जमान देना पड़ेगा। यह माना है कि अन्न सुकूत तकव्वुमी जरूरतुल कत्ई, इसलिए क्योंकि माल की कीमत का साकित होना यह कता की जरूरत की वजह से है, वलम यूजद, और हाल यह है कि कता तो यहां नहीं पाई गई, फसारकल गासिबी, तो यह पहला चोर गासिब की तरह हुआ। और आप पढ़ चुके हैं गासिब जो है वह खुसूमत करके चोर का हाथ कटवा सकता है, तो ये पहला चोर भी खुसूमत करके दूसरे चोर का हाथ कटवा सकता है। आगे देखिए, वमन सरका सरीकतन फरदहा अलल मालिक कबल अल इर्तिफा इलल हाकिम लम युक्ता। भाई सूरत मसला ये कि एक शख्स ने दूसरे की चोरी कर ली और काजी के पास मसला जाने से पहले ही चोर ने वो माल मालिक को वापस कर दिया। कहते हैं अब इस सूरत में कता साकित हो गई, जब चोर ने खुसूमत से पहले ही माल वापस कर दिया तो अब खुसूमत नहीं की जा सकती, क्योंकि झगड़ा तो खत्म हो गया। खुसूमत का क्या माना है, मुकदमा करना यानी झगड़ा है, और जब उसने माल वापस कर दिया तो खुसूमत तो खत्म हो गई, और जब खुसूमत खत्म हो गई तो फिर अब चोरी में हाथ भी नहीं कटवाया जा सकता, क्योंकि हाथ कटवाने के लिए खुसूमत का होना जरूरी है। आप पढ़ चुके हैं कि खुसूमत शर्त है भाई। तो कहते हैं वमन सरका सरीकतन, यहां भी सरीका से मुराद है वो माल मसरूक भाई, जिसको चोरी किया गया है। तो कहते हैं वमन सरका सरीकतन, और जिसने कोई माल चोरी कर लिया, फरद दहा अलल मालिकी, फिर उसने वो माल मालिक को वापस कर दिया, कबल अल इर्तिफाई इलल हाकिमी, हाकिम तक मामला उठाने से पहले, हाकिम तक मामला पहुंचाने से पहले उसने वो माल मालिक को वापस कर दिया, लम युक्ता, तो इस चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। वान अबी यूसुफ रहिमहुल्लाहु ताला, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अन्नहु युक्ताउ, कि इस चोर का हाथ भी काटा जा सकता है, अगरचे इसने माल वापस कर दिया है, फिर भी मालिक हाकिम के पास जाकर इसका हाथ कटवा सकता है। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है, अन्नहु युक्ताउ, के इसका हाथ कटवाया जा सकता है, एतबारन बीमा इदारत दहु बादल मुराफाती, एतबारन कियास करते हुए, बीमा इदारत दहु, उस सूरत पर जब वो माल को वापस करे, बादल मुराफाती, मुराफात के बाद, मुराफा का माना है मामला काजी तक पहुंचाना, मुराफा का क्या माना, मामला काजी तक पहुंचाना। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब काजी के पास एक दफा मसला पहुंच जाए, फिर चाहे चोर माल वापस भी कर दे, फिर भी उसका हाथ काटा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे काजी के पास एक दफा मामला पहुंच जाए, फिर चाहे माल वापस कर दे, फिर भी हाथ काटा जा सकता है। तो अगर काजी के पास पहुंचने से पहले यह माल वापस कर दे, फिर भी इसका हाथ कटवाया जा सकता है। तो वो मुराफा से पहले माल लौटाने को कियास करते हैं मुराफा के बाद माल लौटाने पर
जी।
और मुराफा के बाद माल लौटाया जाए तो बिल इतफाक चोर का हाथ काटा जाता है। तो मुराफा से पहले भी माल वापस कर दे, फिर भी हाथ काटा जाएगा, क्योंकि इसने बहरहाल चोरी का फेल तो किया था, तो बतौर अल्लाह के हक के इसका हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहिमहुल्लाहु ताला अन्नहु युक्ताउ, और इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसका भी हाथ काटा जा सकता है, एतबारन बीमा इदारत दहु बादल मुराफाती, कियास करते हुए उस सूरत पर कि जब वो चोर उस माल को वापस लौटा दे मुराफा के बाद, वजहु जाहिरी, जाहिर रिवायत की वजह, भाई ऊपर मतन में आया कि मुराफा से पहले अगर माल वापस कर देगा तो हाथ नहीं कटवाया जा सकता, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वजहु जाहिरी, जाहिरी रिवायत की वजह यह है, क्या नल खुसूमत शर्तुन लिजुहूर इस सरीकती, कि खुसूमत शर्त है सरीका के जाहिर होने के लिए, खुसूमत करेंगे गवाह पेश करेंगे तो फिर ही चोरी जाहिर होगी, और जब इसने माल ही वापस कर दिया तो खुसूमत ही नहीं हो सकती, जब खुसूमत नहीं हो सकती चोरी भी जाहिर नहीं हो सकती, जब चोरी नहीं जाहिर हो सकती तो चोर का हाथ भी नहीं काटा जा सकता। तो कहते हैं वजह जाहिरी, जाहिर रिवायत की वजह यह है, क्या नल खुसूमत शर्त उन लिजहूर इस सरीकती, के खुसूमत शर्त है चोरी के जाहिर होने के लिए, ले अनल बैनत इन नमा जो इलत हुज्जतन जरूरत कतइल मुनाजाती, लिअन अल बैना था, इसलिए क्योंकि बैना जो है यानी गवाही जो है, इन नमा जो इलत हुज्जतन, इसको हुज्जत करार दिया गया है, जरूरत कतइल मुनाजाती, झगड़े को खत्म करने की जरूरत की वजह से। भाई इधर देखिए, दो आदमियों के दरमियान अगर किसी मसले में झगड़ा होता है तो इस सिलसिले में गवाही को हुज्जत करार दिया है शरीयत ने। झगड़ने वालों में से अगर आदमी अपने मसले पर दो गवाह पेश कर देगा तो काजी उसके हक में फैसला कर देगा। मालूम हुआ ये गवाह किस लिए पेश किए जाते हैं, झगड़े को खत्म करने के लिए। भाई जहां खुसूमत हो, झगड़ा हो, फिर ही बयीना भी पेश की जाएगी, और जब चोर ने माल वापस कर दिया तो झगड़ा नहीं, जब झगड़ा नहीं तो फिर बयीना कहां से पेश की जाएगी भाई। तो ये माना है लि अन अल बैना था इन नमा जो इलत हुज्जतन जरूरत कतइल मुनाजाती, इसलिए क्योंकि गवाही जो है उसको हुज्जत करार दिया गया है, जरूरत कतइल मुनाजाती, झगड़े को खत्म करने की जरूरत की वजह से, झगड़े को खत्म करने के लिए जरूरी है कि बैना पेश किया जाए। वक़द इन कताअतिल खुसूमत, और तहकी खुसूमत तो खत्म हो गई, जब इसने माल वापस कर दिया तो खुसूमत तो खत्म हो गई, जब खुसूमत नहीं तो बैना पेश नहीं करेंगे, अब जब बैना पेश नहीं तो चोरी भी जाहिर नहीं हो सकती। तो कहते हैं वक़द इन कताअतिल खुसूमत, और तहकी खुसूमत जो है वो तो खत्म हो गई, बिखिलाफ इमा बादल मुराफाती, बखिलाफ मुराफा के बाद। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने ये जो चोर ने मुराफा से पहले माल वापस कर दिया, इसको उन्होंने कियास किया था मुराफा के बाद जब चोर माल वापस कर दे। मुराफा के बाद जब चोर माल वापस करे फिर तो हर हाल में चोर का हाथ काटा जाएगा बिल इत्तेफाक भाई। तो आप उसका जवाब दे रहे हैं कि आप मुराफा से पहले वाली हालत को मुराफा के बाद वाली हालत पर कियास नहीं कर सकते। वजह यह कि जब मुराफा हो गया काजी तक मसला चला गया तो मालूम हुआ खुसूमत अपनी इंतहा को पहुंच गई। खुसूमत अपनी इंतहा को पहुंच गई, और जब कोई चीज अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो फिर वो बातिल नहीं हो सकती। फिर वो बातिल नहीं हो सकती। जैसे देखो पीछे निकाह के बाब में आपने पढ़ा था कि अगर एक शख्स एक औरत से निकाह कर ले और महर भी बाकायदा मुकर्रर किया है और सोहबत से पहले खावंद अगर तलाक देगा तो फिर निस्फ महर देना पड़ेगा। अगर सोहबत से पहले खावंद बीवी को तलाक दे देगा तो फिर निस्फ महर देना पड़ेगा। लेकिन अगर सोहबत से पहले मियां बीवी में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो फिर पूरा महर देना पड़ेगा। वजह यह कि जब मियां बीवी में से किसी एक का इंतकाल हुआ तो निकाह अपनी इंतहा को पहुंच गया। निकाह अपनी यानी यूं समझो ये निकाह हुआ ही इतनी मुद्दत के लिए था, और जब एक चीज अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो अब उसको बातिल नहीं किया जा सकता भाई। वो अपनी इंतहा को पहुंचकर खत्म हो गई। बातिल तो आप तब करते, निकाह को तो आप तब तोड़ सकते थे जब तक अभी निकाह अपनी इंतहा को नहीं पहुंचा। तो जब चीज अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो फिर उसको तोड़ा नहीं जा सकता, बातिल नहीं किया जा सकता। तो यहां पर भी जब खुसूमत काजी तक पहुंच गई तो खुसूमत अपनी इंतहा को पहुंच गई भाई। खुसूमत अपनी इंतहा को पहुंच गई। जब खुसूमत अपनी इंतहा को पहुंच गई, मसलन चोर ने वो माल अब मालिक को वापस कर दिया, लेकिन मुराफा तो हो चुका है, काजी के पास गवाह तो पेश हो चुके हैं। तवज्जो है, जब काजी के पास गवाह पेश हो चुके हैं, चोरी साबित हो गई और चोर ने वो माल मालिक को वापस कर दिया, तो अब आप ये न कहें कि चोर ने माल वापस कर दिया, मालिक को उसका हक मिल गया लिहाजा खुसूमत खत्म हो गई, और जब खुसूमत खत्म हो गई तो अब चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि हाथ काटने के लिए तो खुसूमत शर्त थी और वो तो खत्म हो चुकी। हम कहते हैं नहीं, खुसूमत अपनी इंतहा को पहुंच गई है, और जब कोई चीज अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो आप उसको अब बातिल नहीं कर सकते। तो चोर बेशक खुसूमत के बाद माल वापस भी कर दे, फिर भी तकदीरन गोया अभी भी खुसूमत मौजूद है। तकदीरन अभी भी गोया खुसूमत मौजूद है, और जब खुसूमत मौजूद है तो चोर का हाथ काटा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मुराफा के बाद खुसूमत अपनी इंतहा को पहुंच गई है। जब खुसूमत अपने इंतहा को पहुंच गई, अब चोर बेशक माल वापस भी कर दे, फिर भी खुसूमत को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। अब खुसूमत तकदीरन अभी भी बाकी है। जब यह तकदीरन अभी भी बाकी है तो चोर का हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं बेखिलाफ इमा बाद अल मुराफाती, बखिलाफ जो है मुराफा के बाद लिंतहा इल खुसूमती, इस वजह से कि खुसूमत अपनी इंतहा को पहुंच गई, लि हुसूल मकसूदिहा अपने मकसद के हासिल करने के लिए खुसूमत अपनी इंतहा को पहुंच गई। भाई देखिए, एक आदमी से दूसरा आदमी माल चोरी करके ले गया है, तो अब यह आदमी जो है अपना माल वापस लेना चाहता है, तो जब बात काजी तक चली गई तो मालूम हुआ कि माल को वापस लेने के लिए इसने खुसूमत को इंतहा तक पहुंचा दिया। तवज्जो है, तो कहते हैं लिंतहा इल खुसूमती, खुसूमत के अपनी इंतहा को पहुंच जाने की वजह से लिहुसूल मकसूदिहा उस खुसूमत के मकसद को हासिल करने के लिए। खुसूमत का मकसद क्या था? कि माल वापस लिया जाए, तो खुसूमत के मकसद को हासिल करने के लिए खुसूमत अपनी इंतहा को पहुंच गई, यानी काजी तक मसला चला गया, यानी खुसूमत अपनी आखिरी हद तक पहुंच गई भाई। यह माना है लिंतहा इल खुसूमती लि हुसूली मकसूदिहा, इस वजह से कि खुसूमत जो है अपनी आखिरी हद को पहुंच गई अपने मकसद को हासिल करने के लिए। फतबका तकदीरन, तो लिहाजा यह खुसूमत तकदीरन बाकी रहेगी। माल बेशक मालिक को मिल जाए फिर भी यह खुसूमत अब खत्म नहीं, क्योंकि कोई चीज जब अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो फिर वो बातिल नहीं होती। भाई जैसे भाई निकाह के अंदर आपने पढ़ा है, आपने निकाह के अंदर पढ़ा था कि खावंद अगर बीवी को सोहबत से पहले तलाक दे दे तो निस्फ महर देना पड़ता है, और अगर बीवी मुर्तद हो जाए या जुदाई का सबब बीवी बन जाए सोहबत से पहले तो वह निस्फ महर भी साकित हो जाता है। लेकिन याद रखो अगर एक शख्स का एक औरत से निकाह हुआ है, महर मुकरर किया है, लेकिन सोहबत से पहले ही मियां या बीवी में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो फिर इस सूरत में याद रखो कि पूरा महर देना पड़ेगा, इस सूरत में पूरा महर देना पड़ेगा, चाहे खावंद का इंतकाल हुआ है चाहे बीवी का इंतकाल हुआ है। वजह यह कि जब खावंद या बीवी का इंतकाल हो गया तो मालूम हुआ यह निकाह अपनी इंतहा को पहुंच गया, यानी यूं समझो गोया यह निकाह हुआ ही इतनी देर के लिए था, जब यह इतनी देर के लिए हुआ तो यह तो अपनी इंतहा को पहुंच गया, यानी अपनी आखिरी हद को निकाह पहुंच गया, और जब अपनी आखिरी हद को पहुंच गया तो अब निकाह को बातिल करार नहीं दिया जा सकता, तो लिहाजा अब पूरा महर देना पड़ेगा। जब औरत ने एक आदमी से निकाह किया है और सोहबत से पहले ही किसी एक का इंतकाल हो गया तो गोया निकाह अपनी इंतहा को पहुंच गया, इतनी ही मुद्दत के लिए निकाह हुआ था, और जब निकाह अपनी इंतहा को पहुंच गया है तो अब इसके अंदर जो इवज तय हुआ था यानी महर वो हर हाल में देना पड़ेगा, पूरा पूरा महर देना पड़ेगा। तो सोहबत से पहले अगर खावंद तलाक दे तो फिर निस्फ महर देना पड़ता है, और अगर दोनों में से किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर पूरा महर खावंद के जिम्मे होता है, यानी अब निकाह के बातिल करने की तोड़ने की कोई सूरत नहीं है। तो यह निकाह अपनी इंतहा को पहुंचकर खत्म हो गया, अपनी इंतहा को पहुंचकर खत्म हो गया, तो यहां पर भी खुसूमत जो है अपनी इंतहा को पहुंच गई है, लिहाजा आप इसको बातिल नहीं किया जा सकता। चोर बेशक माल दे दे फिर भी यह खुसूमत तकदीरन बाकी रहेगी। भाई बात समझ में आ गई। और देखिए यहां पर ये जो मसला हमने पढ़ा, यहां बैनसुतूर चौथी शर्त भी जिक्र है, चौथी शर्त कता के लिए, हाथ काटने के लिए चौथी शर्त यह है कि खुसूमत होनी चाहिए जाहिरन या तकदीरन। हाथ काटने के लिए खुसूमत जरूरी है जाहिरन या तकदीरन। भाई अगर खुसूमत न रही तो कता भी नहीं होगा, जैसे चोर मुराफा से पहले ही माल वापस कर दे तो खुसूमत न रही। भाई तो अब तक हम कता की चार शर्तें पढ़ चुके हैं, जरा फिर उनको दोहरा लीजिए। पहली शर्त यह थी कता की कि उस कता की वजह से चोर का चीजों को पकड़ने का या चलने का जिनसे नफा खत्म नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त कता की यह थी कि उसमें खुसूमत जरूरी है यानी मुतालबा जरूरी है मालिक का या मालिक के नाइब का। तीसरी शर्त यह थी कि जिस वक्त चोर का हाथ काटा जाए उस वक्त भी मसरूक मिनहू का हाजिर होना जरूरी है। भाई और चौथी शर्त अभी हमने पढ़ी कि चोर का हाथ काटने के लिए हाथ काटने के वक्त भी जाहिरन या तकदीरन खुसूमत का होना जरूरी है। भाई बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, व इदा खुजिया अला रजुलिम बिल कत्अ फी सरिकतिन फवुहिबत लहू लम युक्ता। भाई मैंने आपको पहले बतलाया था कि अगर कोई शख्स चोरी कर ले और काजी उसके हाथ काटने का हुक्म दे दे, लेकिन हाथ काटने से पहले मालिक ने वो सामान जो है चोर को हिबा कर दिया और उसके कब्जे में दे दिया, तो इस सूरत में चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। अब वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह ईदा कुजिया अला रजुलिम बिल कत्अ फी सरिकतिन, और जब किसी आदमी के खिलाफ हाथ काटने का फैसला कर दिया गया फी सरिकतिन किसी चोरी में, फवुहिबत लहू तो फिर उसको वो माल हिबा कर दिया गया, लम युक्ता तो चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, मानाहु इदा सुल्लिमत इलैही। यहां से साहिब हिदाया इस मतन की वजाहत फरमा रहे हैं। मतन में तो सिर्फ क्या आया कि मालिक ने वो माल चोर को हिबा कर दिया, तो साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि माना इस कौल का ये है कि उसके हवाले कर दिया, मालिक ने वो माल चोर के हवाले कर दिया, उसके कब्जे में दे दिया, इसलिए क्योंकि हिबा सिर्फ कहने से ताम नहीं होता, उसके अंदर कब्जा भी जरूरी है। भाई तो कहते हैं मानाहू, इस कौल का माना यह है इदा सुल्लिमत इलैही, कि जब वो माल जो है चोर के हवाले कर दिया गया, وَكَذَلِكَ اِذَا بَاعَهَا الْمَالِكُ اِيَّاهُ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہے مسئلہ یعنی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اِذَا بَاعَهَا الْمَالِكُ اِيَّاهُ جب مالک نے وہ سامان بیچ دیا اِيَّاهُ اس چور کے ہاتھ
جی
اگر چور کا ہاتھ کٹنے سے پہلے ہی مالک نے وہ سامان چور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو بیع ہوتے ہی چور اس مبیعے کا مالک بن گیا اور اس صورت میں حد ساقط ہو جائے گی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا بات سمجھ میں آ گئی یہاں بین السطور ضابطہ ذکر کیا گیا ہے کہ الاصل انما یمنع القضاء یمنع الامضاء بھائی آپ نے پڑھا ہے کہ حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے باقی معاملات کے اندر تو قاضی فیصلہ کر دے تو قاضی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے لیکن حدود کے مسئلے میں صرف فیصلہ کرنا قاضی کا کام نہیں بلکہ اس فیصلے کو نافذ کرنا بھی قاضی کی ذمہ داری ہے معلوم ہوا حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا یہ قضاء قاضی کا حصہ ہے تو یاد رکھو جو چیز قضاء قاضی سے مانع ہوگی وہ اس حد کے نافذ کرنے سے بھی مانع ہوگی کیونکہ حد کا نافذ کرنا بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے
جی
اور نیز آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ جو جو شرطیں قضاء قاضی کے لیے ہیں وہی شرطیں قطع کے لیے بھی ہیں
جی
جو شرطیں قضاء قاضی کے لیے ہیں یعنی جس جس شرط کا ہونا ضروری ہے قاضی کے فیصلے کے لیے قطع کے وقت بھی ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے بھائی تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ اِذَا بَاعَهَا الْمَالِكُ اِيَّاهُ اور اسی طرح ہے مسئلہ یعنی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جب مالک نے وہ مال چور کے ہاتھ بیچ دیا وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى يُقْطَعُ جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے چور اس مال کا مالک ہی کیوں نہ بن جائے ہبا یا بیع کے ذریعے پھر بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا وہ روایت عن ابی یوسف رحمہ اللہ اور یہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی لأن السرقة قد تمت انعقادا وظهورا لأن السرقة اس لیے کیونکہ یہ جو چوری ہے قد تمت یہ پوری ہو چکی ہے انعقادا منعقد ہونے کے اعتبار سے بھی وظهورا اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے بھی یہ چوری پوری ہو چکی ہے منعقد ہونے کے اعتبار سے بھی بھئی چور خفیہ طور پر گیا اور حرز سے مال محفوظ نکال کر لے آیا تو چوری منعقد ہو گئی چوری کا فعل پایا گیا اور پھر قاضی کے پاس دو گواہ بھی پیش ہو گئے اور قاضی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی دے دیا ہے بھئی قاضی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد چور مال کا مالک بن رہا ہے تو قاضی کے پاس بھی معلوم ہوا چوری ظاہر ہو چکی ہے اسی لیے تو اس نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا
جی
تو دلیل چل رہی ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی وہ فرماتے ہیں کہ اس چوری کا انعقاد بھی ہو چکا ہے چور نے یہ فیل کیا ہے اور قاضی کے پاس بھی یہ چوری ظاہر ہو چکی ہے لہذا اب اس کے بعد اگر کوئی عارض پیش آ جائے کہ چور اس مال کا مالک بن جائے تو اس سے کسی قسم کا شبہ پیدا نہیں ہوتا حد تو تب ساقط ہوتی ہے نا جب شبہ آ جائے جب شبہ آ جائے تو چوری پوری ہو چکی ہے چور نے جس وقت مال چرایا تھا اس وقت بھی یہ مالک نہیں تھا قاضی نے جب ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا اس وقت بھی چور مالک نہیں تھا اب بعد میں مالک بن بھی جائے تو اس کی وجہ سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا چوری کا فعل بھی موجود اور چوری کا ظہور بھی ہو چکا ہے بھائی تو کہتے ہیں لِأَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ تَمَّتْ انعقادًا وَظُهُورًا اس لیے کیونکہ یہ چوری جو ہے وہ تحقیق پوری ہو چکی ہے منعقد ہونے اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے وَبِهَذَا الْعَارِضِ لَمْ يَتَبَيَّنْ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ السَّرِقَةِ وَبِهَذَا الْعَارِضِ اور یہ جو عارض پیش آیا ہے کہ چور مال کا مالک بن گیا ہبا کی وجہ سے یا بیع کی وجہ سے تو کہتے ہیں وہ بِهَذَا الْعَارِضِ اور اس عارض کی وجہ سے لم يتبین قیام الملک ظاہر نہیں ہوا چور کی ملکیت کا ہونا وقت السرقتی چوری کے وقت بھائی چوری کا فعل بھی گزر چکا ہے قاضی کے پاس چوری ظاہر بھی ہو گئی ہے اس کے بعد اگر چور اس مال کا مالک بھی بن جائے तो मालिक तो अभी बना है, जब चोरी कर रहा था उस वक्त तो मालिक नहीं था, जब उस वक्त मालिक नहीं था तो किसी किस्म का कोई शुबा नहीं आया। यह माना है वह बिहाद अल आरिजी लम य तबयन कियामुल मिल्क वक्त सरिकती, और यह जो हिबा या बै का जो आरिज पेश आया है इसकी वजह से चोर की मिल्कियत जाहिर नहीं होती चोरी के वक्त, फला शुबहता, तो किसी किस्म का कोई शुबा यहां नहीं, तो लिहाजा हाथ काटा जाएगा। वलना, अब हमारी दलील आ गई, वलना और हमारी दलील यह है कि अनल इम्जा अमीनल कजाई, कि इम्जा जो है यानी हद को नाफिज करना, मीनल कजाई ये भी कजा का हिस्सा है हमारे नजदीक, हुदूद के बाब में हद को नाफिज करना यह भी कजाए काजी का हिस्सा है। तो कहते हैं वलना और हमारी दलील यह है कि अनल इम्जा अमीनल कजा इफी हादल बाबी, कि हद को नाफिज करना यह भी कजा का हिस्सा है, फी हादल बाबी इस बाब के अंदर, लिवुकूइल इस्तिगना अनहु बिल इस्तीफाई, लिवुकूइल इस्तिगना अनहु ऐ अनिल कजाई, अनहु के साथ जो हा जमीर है किसको लौटाएं, कजा को, और इस्तीफा वसूल करना क्या मुराद है, हद को वसूल करना यानी उसको नाफिज करना। तो हम कहते हैं कि हुदूद के मसले में काजी सिर्फ फैसला कर दे तो काफी नहीं जी। काजी सिर्फ फैसला कर दे तो काफी नहीं, बाकी मसाइल के अंदर मैंने बताया कि काजी सिर्फ फैसला कर दे तो काजी की जिम्मेदारी पूरी हो गई। मसलन जैद और अमर में झगड़ा आया था जमीन के मसले में, जैद कहता है ये मेरी जमीन है और अमर कहता है ये मेरी जमीन है, काजी के पास मसला पेश हुआ और जैद ने दो गवाह भी पेश कर दिए, तो काजी ने जैद के हक में फैसला कर दिया, काजी ने जैद के हक में फैसला कर दिया, तो बस काजी की जिम्मेदारी पूरी हो गई, काजी ने बतला दिया कि यह जमीन जो है यह जैद का हक है। अब काजी जाए और जाकर वो जमीन अमर से छुड़ाए और जैद के हवाले करे, यह काजी की जिम्मेदारी नहीं, काजी ने फैसला कर दिया है, अगर काजी के फैसले के बाद भी अमर वो जमीन हवाले नहीं करता तो जैद दोबारा काजी के पास आ सकता है कि आपने फैसला कर दिया था ये फिर भी जमीन मेरे हवाले नहीं कर रहा, बात समझ में आ गई, तो फिर इस सूरत में काजी उसको जमीन दिला देगा। तो आम मामलात के अंदर काजी जब एक मामले का फैसला कर दे तो काजी की जिम्मेदारी पूरी हो गई, उसको नाफिज करना काजी के जिम्मे नहीं है, जबकि हुदूद के मसले के अंदर सिर्फ फैसला करना काजी की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हद को नाफिज करना भी काजी की जिम्मेदारी है, इसलिए क्योंकि अगर काजी फैसला कर देगा और नाफिज नहीं करवाता तो इसका तो फायदा ही कोई ना हुआ, हद को तो काजी और हाकिम के अलावा कोई और वसूल कर ही नहीं सकता, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिवुकूइल इस्तिगना अनहु बिल इस्तीफाई, इसलिए क्योंकि काजी के फैसले से बेनियाजी वाकिअ होगी बिल इस्तीफाई, उस हद को वसूल करने से, हद को वसूल करने से काजी के फैसले से बेनियाजी हासिल होगी, उससे पहले बेनियाजी हासिल नहीं। इज़िल क़ज़ाउ लिल इज़हारी, इसलिए क्योंकि काजी का जो फैसला है लिल इज़हारी वो हक के इजहार के लिए होता है, काजी का फैसला सिर्फ किस लिए होता है कि हक का वो इजहार कर दे, और जब काजी किसी मामले में फैसला करता है तो हक जाहिर हो जाता है, लेकिन यहां पर इजहार काफी नहीं, इसलिए क्योंकि यहां चोरी के अंदर चोर का हाथ काटना यह अल्लाह का हक है और काजी फैसला कर देगा तो फैसले से तो हक जाहिर हो गया, लेकिन अल्लाह तो हर चीज को जानते हैं, कोई फायदा हुआ नहीं, यहां तो इजहार का भी फायदा नहीं है, साहिब हक भी जानता है कि यह हक है मेरा, तो आम मामलात के अंदर तो काजी हक को जाहिर कर दे वही काफी है, लेकिन यहां तो साहिब हक अल्लाह ताला है और अल्लाह के नजदीक तो हक पहले ही जाहिर है, तो यहां पर सिर्फ इजहार काफी नहीं बल्कि सजा को नाफिज भी करे काजी। अगर सिर्फ काजी फैसला करेगा तो फिर इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हक तो अल्लाह के नजदीक पहले ही जाहिर है भाई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं ईदिल कजा उलिल इजहारी, इसलिए क्योंकि काजी का फैसला हक के इजहार के लिए होता है, वलकत हकुल्लाह ताला, और हाथ का काटना यह तो अल्लाह का हक है, वह हुआ जाहिर इंदहू, और अल्लाह का यह हक तो अल्लाह के नजदीक जाहिर है, तो यहां इजहार का कोई फायदा ही नहीं, वो तो अल्लाह के नजदीक पहले ही जाहिर है। वह इदा काना का जालिक, और जब मामला ऐसा ही है, जब मामला ऐसा ही है यानी हद को नाफिज करना कजाए काजी का हिस्सा है तो युश्तरतु कियामुल खुसूमत इंदल इस्तीफाई, तो हद की वसूली के वक्त भी खुसूमत का होना शर्त होगा। तवज्जो है, मैंने आपको बतलाया कि हुदूद के मसले में हद को नाफिज करना यह भी कजाए काजी का हिस्सा है, तो जो शर्तें कजाए काजी के लिए जरूरी हैं वही शर्तें हद को नाफिज करने के लिए भी जरूरी हैं। और कजाए काजी के लिए क्या जरूरी था कि वहां खुसूमत पाई जाए, झगड़ा पाया जाए, तो जिस तरह यह खुसूमत कजाए काजी के वक्त जरूरी है इसी तरह इमजा के वक्त भी खुसूमत का होना जरूरी, लेकिन इमजा से पहले तो चोर उस माल का मालिक बन गया। तो जब चोर माल का मालिक बन जाए तो जैसे उस वक्त काजी फैसला नहीं कर सकता, इसी तरह जब चोर माल का मालिक बन जाए तो काजी हद को नाफिज भी नहीं कर सकता भाई। तो यह माना है वह इदा काना कजालिक, और जब मामला ऐसा ही है यानी इमजा भी कजा का हिस्सा है तो युश्तरतु कियामुल खुसूमत इंदल इस्तीफाई, तो खुसूमत का होना शर्त होगा इंदल इस्तीफाई उस हद को वसूल करते वक्त यानी उस कता को वसूल करते वक्त। वसारा कमा इदा मल्ल कहा मिनहू कबल अल कजाई, भाई देखो चोर उस माल का मालिक बन गया कजाए काजी के बाद अलबत्ता हाथ काटने से पहले, लेकिन हाथ काटने से पहले जब वो मालिक बन गया तो यूं ही समझो कजाए काजी से पहले ही वो मालिक बन गया, और जब कजाए काजी से पहले ही वो मालिक बन गया फिर तो काजी फैसला ही नहीं कर सकता भाई। तो कहते हैं वसारक, और ये ऐसे ही हो गया कमा ईजा मल्ला कहा, जैसे कि उस शख्स ने उस माल का मालिक बना दिया मीन हूं उस चोर को कबल अल कजा ई कजा से पहले ही जी। ये इसी तरह हो गया जैसे उस माल वाले ने चोर को उस माल का मालिक बना दिया कजाए काजी से पहले ही भाई। तो कहते हैं वसारा कमा इदा मल्ल कहा मिनहू कबल अल कजाई, और ये इसी तरह हो गया कि जैसे उस माल वाले ने उस चोर को उस माल का मालिक बना दिया काजी के फैसले से पहले ही। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम ये कि अगर हाथ कटने से पहले चोर उस माल का मालिक बन जाए, चाहे बैर के जरिए मालिक बने चाहे हिबा के जरिए मालिक बने, तो हद साकित हो जाएगी। जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, हद साकित नहीं होगी, इसलिए क्योंकि जिस वक्त चोरी की थी उस वक्त भी चोर माल का मालिक नहीं था, जिस वक्त काजी ने फैसला किया उस वक्त भी चोर माल का मालिक नहीं था, बाद में अगर चोर माल का मालिक बन भी जाए तो उसकी वजह से उस चोरी के अंदर किसी किस्म का शुबा नहीं आता, लिहाजा चोर का हाथ काटा जाएगा। जबकि हम कहते हैं कि हुदूद के मसले में हद का नाफिज करना यह भी कजाए काजी का हिस्सा है भाई, और यह जो काजी फैसला करता है यह हक के इजहार के लिए करता है ताकि वह हक को जाहिर कर दे, और यहां पर अल्लाह का हक है और अल्लाह तो हर चीज को जानने वाले हैं, अल्लाह तो अपने हक से खूब बाखबर हैं। तो यहां पर अगर काजी सिर्फ फैसला कर दे तो फिर तो यहां काजी के फैसले का कोई फायदा ही ना हुआ, क्योंकि हक तो पहले ही अल्लाह के नजदीक जाहिर है। तो लिहाजा हुदूद के मसले में सिर्फ इजहार काफी नहीं है बल्कि हद को नाफिज करना भी काजी की जिम्मेदारी है, और हद का नाफिज करना यह कजाए काजी का हिस्सा है। जब यह कजाए काजी का हिस्सा है तो कजाए काजी के वक्त जिस कदर शर्तें थी वही शर्तें इस हद को नाफिज करते वक्त भी जरूरी होंगी। तो लिहाजा जिस तरह कजाए काजी के वक्त खुसूमत जरूरी थी इसी तरह कता के वक्त भी खुसूमत जरूरी है, लेकिन जब चोर उस माल का मालिक बन गया तो कता के वक्त तो खुसूमत ही बाकी ना रही, लिहाजा कता साकित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, काल वकदालिक इदा नकसत कीमतुहा मिनन निसाब, और इसी तरह होगा मसला जब उस माल की कीमत कम हो जाए निसाब से। भाई गुज़श्ता मसले में आपको बतलाया कि अगर चोर जो है उस माल का मालिक बन जाए हाथ के कटने से पहले तो हद साकित हो जाएगी। इसी तरह याद रखो अगर हाथ के कटने से पहले वो माल जो चोर ने चोरी किया था उसकी कीमत निसाब से कम हो जाए तो तो इस सूरत में भी चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। मसलन चोर ने एक चीज चुराई थी, उसकी कीमत 12 दिरहम है और काजी ने उसके हाथ के काटने का फैसला कर दिया और मसलन चंद दिन के बाद चोर का हाथ काटा जाएगा, लेकिन उस हाथ के कटने से पहले पहले उस चीज की कीमत 10 दिरहम से कम हो गई, तो अब इस सूरत में हद साकित हो जाएगी। इसलिए क्योंकि हद का नाफिज करना यह भी कजाए काजी का हिस्सा है भाई, और जिस तरह कजाए काजी के वक्त जो है वो उस माल का 10 दिरहम के बकदर होना जरूरी था, इसी तरह हाथ के काटते वक्त भी उस माल का 10 दिरहम के बकदर होना जरूरी है भाई। तो कहते हैं قال وكذلك اذا نقصت قيمتها من النصاب, और इसी तरह है मसला जब उस माल की कीमत कम हो जाए من النصاب निसाब से। चोरी का निसाब कितना है? 10 दिरहम। 10 दिरहम की अगर कोई चोरी करे उसका हाथ काटा जाता है भाई, तो अगर उस माल की कीमत कम हो गई मीना निसाबी निसाब से पहले तो चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। यानी कबल अल इस्तीफा इबाद अल कजा, यहां से साहिब हिदाया मतन की वजाहत फरमा रहे हैं
जी।
मतन में तो आया कि इसी तरह है मसला, यानी चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा जब उस माल की कीमत निसाब से कम हो जाए। साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि मतलब यह है कि काजी के फैसले के बाद अलबत्ता हाथ के काटने से पहले अगर कीमत कम हो जाए तो फिर चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं यानी कबल अल इस्तीफा इबाद अल कजाई, यानी कता को वसूल करने से पहले और काजी के फैसले के बाद माल की कीमत कम हो जाए। वअन मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से रिवायत है अन्नहु युक्ताउ, के इस चोर का हाथ काटा जाएगा। हाथ काटने से पहले बेशक माल की कीमत निसाब से कम हो गई लेकिन इस चोर का हाथ काटा जाएगा। वह हुआ कौल जुफर अब शाफिई रहिमहुमल्लाह, और यही कौल है इमाम जुफर और इमाम शाफिई रहिमहुमल्लाह का भी। एतबारन बिन नुकसानी फिल आइन, एतबारन कियास करते हुए बिन नुकसानी फिल आइन, आइन के अंदर नुकसान पर। भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हाथ के कटने से पहले बेशक माल की कीमत कम हो जाए फिर भी हाथ काटा जाएगा, वो इसको कियास करते हैं ऐन के अंदर कमी पर। यानी वो जो माल जो चोर ने चोरी किया था, वो माल जो चोर ने चोरी किया था, मसलन चोर ने 20 दिरहम चोरी किए थे और फिर उन 20 दिरहमों में से 15 दिरहम चोर ने खर्च कर दिए हैं या 15 दिरहम चोर से जाया हो गए हैं, तो देखो आयन के अंदर कमी आ गई, वो माल जो चोर ने चोरी किया था खुद उस माल की जात में ही कमी आ गई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे उस माल की जात में कमी आ जाए फिर भी चोर का हाथ काटा जाता है, तो अगर उस माल की कीमत में कमी आ जाए फिर भी चोर का हाथ काटा जाएगा। तो ये माना है एतबारम बिन नुकसानी फिल आईनी, कियास करते हुए आयन के अंदर कमी पर। वलना, अब हमारी दलील आ गई। वलना हमारी दलील जो है कि नकमाल निसाबी लम्मा कान शर्त युश्तरतु कियामुहु इंदल इम्जाई लिमा ज़करना, हम कहते हैं कि निसाब का कामिल होना जिस तरह इब्तिदा के अंदर शर्त था इसी तरह कता के वक्त भी शर्त होगा। इब्तिदा के अंदर भाई निसाब के बकदर चोरी करेगा तो फिर ही काजी हाथ काटने का फैसला करेगा, और जिस वक्त हाथ काटा जाए उस वक्त भी निसाब के बकदर माल की कीमत होना जरूरी है। इसलिए क्योंकि हद को नाफिज करना यह भी कजाए काजी का हिस्सा है, तो जिस वक्त काजी हाथ काटने का फैसला कर रहा है उस वक्त भी उस माल की कीमत निसाब के बकदर होना जरूरी, तो जिस वक्त चोर का हाथ काटा जाएगा उस वक्त भी उस माल की कीमत निसाब के बकदर होना जरूरी है भाई। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्न कमाल निसाब लम्मा कान शर्तन, कि निसाब का कामिल होना जब वो शर्त था तो युश्तरतु कियामुहु इंदल इम्जाई, तो हद को नाफिज करते वक्त भी इस निसाब का कामिल होना शर्त होगा। लिमा जकर ना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि हुदूद के मसले में हद को नाफिज करना भी कजाए काजी का हिस्सा है भाई। बिखिलाफ इन नुकसानी फिल आईनी, भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कीमत के अंदर जो कमी आई थी उसको कियास किया था उस माल की ऐन में कमी पर, उस माल की ऐन उस माल की जात कम हो जाए, चाहे सारा माल ही चोर खत्म कर दे फिर भी चोर का हाथ काटा जाता है, तो अगर कीमत कम हो जाए फिर भी चोर का हाथ काटा जाएगा। तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया कि नहीं, आप इस कीमत को ऐन पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ऐन तो मजमून होती है और कीमत मजमून नहीं है, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। भाई किस तरह? भाई देखिए, आपने पढ़ा है जब चोर का हाथ काटा जाता है तो उसके बाद चोर पर जमान नहीं आता, लेकिन उससे पहले वो चोर गासिब के दर्जे में है। जब तक चोर का हाथ नहीं कटा चोर गासिब के दर्जे में है, और गासिब के पास अगर वो माल हलाक हो जाए तो गासिब पर जमान आया करता है। तो लिहाजा हम कहते हैं चोर का जब तक हाथ नहीं कटा चोर पर माल का जमान आएगा, वो जितना माल खर्च करता जाएगा चोर पर जमान आता जाएगा। तो मसलन 20 दिरहम उसने चोरी किए थे, 15 दिरहम उसने खर्च कर दिए या उसके पास हलाक हो गए और 5 दिरहम उसके पास बाकी हैं, तो अभी भी 5 दिरहम वो तो ऐन है और 15 दिरहम जो है वो चोर पर जमान आ गया, तो 15 और 5 ये फिर भी 20 बन रहे हैं। तो चोर के जिम्मे है सारा माल अदा करना और उसमें से कुछ माल ऐन है और कुछ चोर के जिम्मे देन है भाई। तो लिहाजा ऐन के अंदर अगर माल के अंदर कमी भी आ जाए, माल खर्च भी कर दे चोर, फिर भी चोर पर उसका जमान आता है और कुछ माल बचा हुआ है, तो ऐन और देन मिलाकर निसाब पूरा हो जाता है। 20 में से 15 दिरहम उसने खर्च किए हैं और 5 दिरहम बाकी हैं, तो 5 दिरहम तो ऐन हो गए और 15 दिरहम उसके जिम्मे देन बन गया, तो 15 और 5 फिर 20, वह अभी भी 20 दिरहम ही माल है। कुछ ऐन है चोर के जिम्मे और कुछ देन है भाई, जबकि चीज की जो कीमत कम होती है उसका तो चोर पर जमान नहीं आएगा। चोर ने एक चीज चोरी की है और उसकी कीमत कम हो गई और फिर चोर वो माल वापस करता है तो चोर पर कीमत के कम होने का तो कोई जमान नहीं आएगा भाई। तो किसी चीज की जो कीमत कम होती है उसमें जमान नहीं आता, लेकिन किसी की चीज में कोई कमी करेगा तो उसको जमान देना पड़ेगा। तो दोनों में फर्क है। तो कहते हैं बिखिलाफ इन नुकसान फिल आईनी, बखिलाफ वो जो कमी आई है ऐन के अंदर, लिअन्नहु मज़मूनुन अलैही, इसलिए क्योंकि वो चोर पर मजमून है, चोर पर उसका जमान आएगा, क्योंकि जब तक हाथ नहीं कटा चोर गासिब के दर्जे में है तो वो चोर के ऊपर मजमून है यानी चोर पर उसका जमान आएगा। फकमुलन निसाब ऐन व दैना, तो निसाब पूरा होगा ऐन और दैन होने के एतबार से। ऐन में कमी आ गई है तो जो कमी आई है वो देन बन गया, तो ऐन और देन को मिलाकर निसाब फिर भी पूरा होता है। तो ये माना है फकमुलन निसाब ऐन व दैना, तो निसाब कामिल है ऐन और देन होने के एतबार से कि कुछ माल ऐन है और कुछ चोर के जिम्मे देन है। कमा इदस्तहलका कुल्लहू, जैसे कि चोर उस सारे माल को हलाक कर दे। भाई चोर ने 20 दिरहम चोरी किए थे, उसने वो सारे दिरहम खर्च कर दिए, अब देखो वो सारा माल उसने खर्च कर दिया है फिर भी उसका हाथ काटा जाता है, क्योंकि ये सारा माल उसके जिम्मे देन है भाई। तो कहते हैं कमा इदस्ता हलका कुल्लहू, जैसे कि चोर उस सारे माल को हलाक कर दे। अम्मा नुकसान उस सारी, सार कहते हैं नर्ख भाई, किसी चीज के नर्ख और कीमत है जो, कहते हैं अम्मा नुकसान उस सारी, बाकी कीमत का जो नुकसान है गैर मजमून, वो गैर मजमून है। किसी चीज की कीमत कम हो तो उसका जमान दूसरे पर नहीं आता। एक शख्स ने दूसरे की कोई चीज जबरदस्ती गसब कर ली और उस वक्त मार्केट में उसकी कीमत 1 लाख रुपया थी, और फिर 10 दिन के बाद वो चीज वापस की और अब मार्केट के अंदर वो चीज 50,000 की हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस गसब करने वाले पर कोई जमान नहीं आएगा। तो यह माना है अम्मा नुकसान उस सारी गैर मजमून, बाकी नर्ख का जो नुकसान है कीमत के अंदर जो कमी आती है गैर मजमून, वो गैर मजमून होती है, उसमें जमान नहीं आता। फफ तारका, तो दोनों जुदा हो गए, दोनों जुदा हो गए। क्या दोनों चीजें जुदा हो गई? एक है कीमत के अंदर कमी और एक है ऐन के अंदर कमी, तो दोनों जुदा हो गए। ऐन के अंदर जो कमी आएगी वो मजमून है, कीमत में जो कमी आएगी वो गैर मजमून है, तो आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर कीमत में कमी आ जाए और उस माल की कीमत निसाब से कम हो जाए हाथ काटने से पहले, तो चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। और याद रखो यहां पर जो ऊपर हमने मसला पढ़ा, वकजाली का ईदा नकसत कीमतुहा मिनन निसाबी, यहां बैनसुतूर पांचवीं शर्त जिक्र की है कता के लिए, और पांचवीं शर्त यह है कि जिस तरह कजा के वक्त निसाब का कामिल होना शर्त है, इसी तरह कता के वक्त भी निसाब का कामिल होना शर्त है। यानी कजा के वक्त जिन चीजों का होना शर्त है, उसी तरह हद को नाफिस करते वक्त भी उन चीजों का होना शर्त है। भाई आगे देखिए, व इदा दा सारिको अन अल ऐन अल मसरू कता मिल्कुहु सकत अल कतउ अन्हु व इल्लम युकिम बय्यिनतन। सूरत मसला ये कि काजी ने चोर के हाथ काटने का फैसला कर दिया, अभी चोर का हाथ नहीं काटा गया था कि चोर ने दावा कर दिया कि यह माल जो मैंने चोरी किया था यह तो मेरा अपना माल है, कहते हैं फौरन हद साकित हो जाएगी, इसलिए क्योंकि शुबा आ गया कि हो सकता है यह सच बोल रहा हो, और हद जो है शुबे की वजह से साकित हो जाती है। भाई तो कहते हैं वह ईदा दास सारे को अन्नल आइन अल मसरू कता मिल्कू हो, और जब चोर ने यह दावा कर दिया अन्नल आइन अल मसरू कता कि वो चीज जिसको इसने चुराया है मिल्कू हो वो उसकी मिल्कियत है, सकतल कत ओ अनहु तो उस चोर से कता साकित हो जाएगी, वह इल्लम युकीम बैना तन अगरचे वो बैना कायम न करे, अगरचे वो बैना कायम न करे फिर भी, भाई चोर ने सिर्फ इतना कहा कि माल जो मैंने चोरी किया था ये मेरा अपना माल था, चोर के पास कोई बैना नहीं, कोई गवाह वगैरह मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी शुबा तो आ गया कि हो सकता है ये सच बोल रहा हो, और हद शुबे की वजह से साकित हो जाती है। तो कहते हैं वह इल्लम युकीम बैना तन अगरचे चोर जो है वो गवाही कायम न करे मानाहु, यहां से साहिब हिदाया इस मतन की वजाहत फरमा रहे हैं, मानाहु के साहिब कुदूरी के कौल का माना यह है बादमा शहीद शाहिदान बिस सरकती के बाद उसके कि जब दो गवाह चोरी की गवाही दे दें। ये जो मतन में जिक्र हुआ है कि चोर अगर ये कह दे कि ये माल तो मेरा अपना था तो वो हद साकित हो जाएगी जबकि दो गवाह गवाही दे चुके हैं उसके बाद। भाई याद रखो अगर चोरी चोर के अपने इकरार से साबित हुई है और चोर के अपने इकरार की वजह से काजी ने इसके हाथ काटने का हुक्म दे दिया और फिर उसके बाद चोर कहता है कि वो माल जो मैंने चोरी किया था वो तो मेरा अपना माल था, तो बिल इत्तेफाक सबके नजदीक इस चोर पर से हद साकित हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी चोरी गवाहों के जरिए साबित हुई है और उसके बाद वो कहता है कि ये माल तो मेरा अपना था, तो हमारे नजदीक हद साकित होगी, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, अब हद साकित नहीं हो सकती। तो कहते हैं मानाहु के साहिब कुदूरी के कौल का माना यह है कि बाद अमा शहीद शाहिदान बिसरिकती के बाद उसके के जब दो गवाहों ने इस चोरी की गवाही दे दी थी उसके बाद चोर कहता है यह माल तो मेरा अपना था, फिर भी हद साकित हो जाएगी। वकाल शाफी रहमहुल्ला और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं ला यस्कुदुमी मुजर्रदी दावा कि हद साकित नहीं होगी सिर्फ चोर का दावा करने से, सिर्फ चोर के दावा करने से कि यह माल मेरा अपना था, सिर्फ यह दावा करने से हद साकित नहीं होगी इल्ला ये कि वो गवाह पेश कर दे। भाई तो कहते हैं वकाल शाफी रहमुल्ला और इमाम शाफी रहमुल्ला फरमाते हैं ला यस्कुतु बिमुजर्रदी दावा की कता साकित नहीं होगी सिर्फ उस चोर के दावा करने की वजह से, लिअन्नहु ला याजिज़ु अन्हु सारिकुन इसलिए क्योंकि इससे तो कोई भी चोर आजिज नहीं है, ये काम तो फिर हर चोर कर सकता है, जिस चोर के भी हाथ काटने का काजी हुक्म देगा चोर कह देगा यह माल तो मेरा अपना था तो हद ही साकित हो जाएगी, गोया हद का दरवाजा ही बंद हो जाएगा, किसी चोर को भी हद नहीं लगाई जा सकती क्योंकि यह बात तो हर चोर कर सकता है। भाई तो कहते हैं لأنه لا يعجز عنه سارق, इसलिए क्योंकि इस बात से तो कोई भी चोर आजिज नहीं है. فيؤدي الى سد باب الحد, तो ये बात पहुंचा देगी हद के दरवाजे के बंद करने की तरफ, के हद का दरवाजा ही बंद हो जाएगा. वलना, और हमारी दलील ये है कि अन्न शुभाता दारीअतुन, के शुबा जो है वो साकित करने वाला है. दरा या दरऊ का माना साकित करना. हमारी दलील यह है कि अन्न शुभाता दारीअतुन, के शुबा साकित करने वाला है, यानी शुबा हद को साकित कर देता है. और यहां भी जब इस चोर ने कहा यह माल मेरा है, तो इसके मालिक होने का शुबा आ गया कि हो सकता है ये सच बोल रहा हो, यही इस माल का मालिक हो भाई, और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है. ये माना है. वलाना, हमारी दलील ये है कि अन्न शुभाता दारीअतुन, के शुबा जो है वो हद को साकित कर देता है. वयतहक्ककु बिमुजर्रदी दावा लिलिहतिमाली, और ये शुबा पाया जाता है सिर्फ दावा करने से ही. लिलिहतिमाली, इहतिमाल की वजह से, क्योंकि इहतिमाल है कि हो सकता है ये सच बोल रहा हो, तो सिर्फ ये दावा करने की वजह से ही शुबा पैदा हो गया. तो कहते हैं वयतहक्ककु बिमुजर्रदी दावा लिलिहतिमाली, और सिर्फ इस दावे की वजह से ही ये शुबा साबित हो जाएगा. लिलिहतिमाली, इस इहतिमाल की वजह से कि शायद वो सच बोल रहा हो. वला मुअतबरा बिमा काला, यहां से जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील का. इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि चोर का सिर्फ दावा काफी नहीं है, इसलिए क्योंकि यह दावा तो हर चोर कर सकता है. तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया और कहते हैं वला मुअतबरा बिमा काला, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जो फरमाया उसका कोई एतबार नहीं है. बिदलील सिहत रुजूई, इस दलील से कि रुजू करना सही होता है. बादल इकरार, इकरार के बाद. हम कहते हैं कि इकरार की वजह से भी चोरी साबित होती है, और चोर जब इकरार कर ले तो उसका हाथ काटा जाता है. हालांकि हर इकरार करने वाले में यह इहतमाल है कि शायद वो रुजू कर ले. हर इकरार करने वाला रुजू कर सकता है, फिर भी इकरार करने वाला जब रुजू कर ले तो वो रुजू मोतबर होता है. हर मुकिर रुजू कर सकता है, फिर भी जब वो रुजू कर ले तो वो रुजू मुअतबर होता है. तो यहां भी इसी तरह हर चोर ये दावा कर सकता है, फिर भी चोर ये दावा कर लेगा तो ये मुअतबर होगा. जैसे हर मुकिर रुजू कर सकता है, फिर भी रुजू मुअतबर होता है, इसी तरह हर चोर ये दावा कर सकता है कि ये मेरा माल है, फिर भी ये दावा मुअतबर होगा. बात समझ में आ गई. ये माना है वला मुअतबर बिमा काला, और जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया उसका कोई एतबार नहीं है. बिदलील सिहत रुजू इबादल इकरारी, इस दलील की वजह से कि इकरार के बाद रुजू करना सही होता है. अगरचे हर मुकिर रुजू कर सकता है, फिर भी उसका रुजू मुअतबर होता है. तो हर चोर भी अगरचे ये दावा कर सकता है कि मेरा माल है, फिर भी उसका ये कौल मुअतबर होगा भाई. बात समझ में आ गई. और नीत इस वजह से भी कि इस मसले का तो किसी चोर को पता नहीं होगा कि अगर मैं यूं कह दूं कि ये माल मेरा है तो फिर मेरा हाथ नहीं कटेगा. बात समझ में आ गई. तो लिहाजा ये कहना कि इसकी वजह से हद का दरवाजा ही बंद हो जाएगा, ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि चोर को तो इन मसाइल का इलम ही नहीं होता. बात समझ में आ गई. और यहां पर देखो बैन सुतूर छठी शर्त जिक्र की गई है कि कता की छठी शर्त यह है कि चोर जो है माले मसरूका की मिल्कियत का दावा न करे. कि तब कता होगा जब चोर माले मसरूका की मिल्कियत का दावा न करे. अगर चोर ने कता से पहले उस माल की मिल्कियत का दावा कर दिया तो हद साकित हो जाएगी. बात समझ में आ गई. तो यहां तक तकरीबन छह शर्तें हम पढ़ चुके हैं कता की. कता की पहली शर्त क्या है कि अगर कता की वजह से चोर का जिनसे नफा खत्म हो रहा हो, चीजों को पकड़ने का या चलने का, तो फिर हाथ नहीं काटा जाएगा. दूसरी शर्त यह थी कि कता के अंदर खुसूमत शर्त है कि कोई मुतालबा करे, मालिक हो चाहे मालिक का कोई नाइब हो. तीसरी शर्त यह हमने पढ़ी कि कता के वक्त मसरूक मिनहू का हाजिर होना शर्त है. और चौथी शर्त हमने यह पढ़ी कि कता के वक्त भी खुसूमत होनी चाहिए, जाहिरन या तकदीरन. कता के वक्त भी खुसूमत होनी चाहिए, जाहिरन खुसूमत हो या तकदीरन खुसूमत हो। और पांचवीं शर्त हमने यह पढ़ी कि जिस तरह काजी के फैसले के वक्त निसाब का कामिल होना शर्त है, इसी तरह कता के वक्त भी निसाब का कामिल होना शर्त है। और छठी शर्त हमने अभी पढ़ी कि चोर इस माले मसरूका की मिल्कियत का दावा न करे, फिर ही कता होगा। अगर चोर ने इस माले मसरूका की मिल्कियत का दावा कर दिया, फिर उसका हाथ नहीं काटा जा सकता। आगे देखिए, वह इदा अकर रजुलानी बि सरिकतिन सुम्मा काला अहदुहुमा हुआ माली लम युक्ता। भाई सूरत मसला यह कि दो आदमियों ने इकरार कर लिया कि हमने ये माल चोरी किया था, और फिर इन दोनों में से एक कह देता है कि ये जो माल हमने चुराया ये तो मेरा माल था। तो आप पढ़ चुके हैं इस सूरत में हद साकित हो जाती है, तो यहां पर भी दोनों से हद साकित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। एक से तो हद इसलिए साकित हो गई कि उसने गोया चोरी से ही रुजू कर लिया। जब उसने क्या कहा, ये माल मेरा अपना था, तो इसने चोरी से रुजू कर लिया। और दूसरे के हक में शुबा पैदा हो गया, इसलिए क्योंकि एक ही चोरी के फेल की ये दोनों बात कर रहे हैं भाई। तो एक ने रुजू कर लिया और दूसरे के हक में उस रुजू की वजह से शुबा पैदा हो गया, और शुबा की वजह से हद साकित हो जाती है। तो कहते हैं वह इदा अकर रजुलानी बि सरिकतिन, और जब इकरार किया दो आदमियों ने किसी चोरी का, सुम्मा काला अहदुहुमा, फिर उन दोनों में से एक ने कहा, हुआ माली, कि वो मेरा माल है, यानी वो माल जो हमने चोरी किया वो मेरा माल है, लम युक्ता, तो इन दोनों का हाथ नहीं काटा जा सकता, लिअन्न रुजुअ आमिलुन फी हक़िर राजिई, इसलिए क्योंकि रुजू करना आमिलुन ये अमल करता है, फी हक़िर राजिई रुजू करने वाले के हक में, रुजू करना रुजू करने वाले के हक में अमल करता है, यानी उसका रुजू मोतबर है, वो फायदा देता है, उसके रुजू की वजह से हद उससे साकित हो जाती है। तो कहते हैं लिअन्न रुजू आमिलुन फी हक़ राजिई, इसलिए क्योंकि रुजू जो है रुजू करने वाले के हक में अमल करता है, यानी उसको फायदा देता है, व मूरिसुन लिशुबहत फी हक़िल आखरी, और ये शुबा पैदा कर देता है दूसरे चोर के हक में, लिअन्न सरिकत तस्बुतु बि इक़रार हिमा अल शिरकति, इसलिए क्योंकि यह चोरी साबित हुई है इन दोनों के इकरार की वजह से, अल शिरकति शिरकत के तरीके पर, कि हमने मिलकर चोरी की थी। बात समझ में आ गई, दोनों ने मिलकर चोरी की थी। जब इस चोरी में एक का हाथ नहीं काटा जा सकता, तो दूसरे का हाथ भी नहीं काटा जा सकता। आगे देखिए, फइन सरिका सुम्मा गाब अहदुहुमा। भाई सूरत मसला ये, दो आदमियों ने मिलकर कोई सामान चुराया है, और फिर इनमें से एक चोर पकड़ा गया और दूसरा गायब है, और इस एक चोर के खिलाफ गवाहों ने गवाही दे दी, तो क्या सिर्फ इस एक चोर का हाथ काटा जाएगा या नहीं? तो कहते हैं हां, इस चोर का हाथ काटा जाएगा। और आपको साहिब हिदायत बतलाएंगे इस सिलसिले में इमाम साहिब के दो कौल हैं भाई। उनके पहले कौल के मुताबिक जब एक चोर गायब है तो दूसरे का हाथ भी नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि हो सकता है वो चोर जो गायब है वो हाजिर होता तो वो कह देता कि ये तो मेरा माल है, तो उसकी वजह से क्या आता, शुबा आ जाता, और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती। लेकिन इमाम साहब का आखिरी कौल ये है कि बेशक एक चोर गायब हो, दूसरे चोर का हाथ काटा जाएगा भाई। कहते हैं फइन सरका, अगर दो आदमियों ने चोरी की, सुम्मा गाब अहदुहुमा, फिर उन दोनों में से एक गायब हो गया, व शहीद शाहिदानी अला सरिकतिहिमा, और दो गवाहों ने इन दोनों की चोरी पर गवाही दे दी, कुतिअल आखरु फी कौलि अबी हनीफा रहिमहुल्लाहु तआला अल आखिरी, तो कुतिअल आखरु, तो वो जो दूसरा चोर है यानी जो हाजिर है उसका हाथ काटा जाएगा, फी कौलि अबी हनीफा अल आखिरी, इमाम साहेब के आखिरी कौल में जी। इमाम साहेब के आखिरी कौल में, वह हुआ कौलुहुमा, और यही साहिबैन का भी कौल है, यही साहिबैन का भी कौल है, वकान यकूलु अव्वलन, और इमाम साहेब पहले फरमाते थे, ला युक्ताउ, इस हाजिर चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, लिअन्नहु लौ हाजारा, इसलिए क्योंकि अगर वो गायब चोर भी हाजिर हो जाता, रुबमा यद्दई शुबहता, तो बसाओकात वो शुबे का दावा कर देता, یعنی وہ ہو سکتا ہے وہ شبے کا دعویٰ کر دیتا کہ یہ مال تو میرا ہے بھائی، اور شبے کی وجہ سے تو حد ساقط ہو جاتی ہے، لہذا اس حاضر کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا. آگے دیکھیے وجہ قولہ الاخری، امام صاحب کے آخری قول کی وجہ یہ ہے. امام صاحب کا آخری قول کیا تھا؟ کہ حاضر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو کہتے ہیں وجہ قولہ الاخری، امام صاحب کے آخری قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الغیبت تمنع ثبوت السرقۃ علی الغائب، کہ ان الغیبت کہ ایک چور کا غائب ہونا، تمنع یہ منع کر دیتا ہے، ثبوت السرقۃ چوری کے ثابت ہونے کو، علی الغائب اس غائب کے خلاف. بھئی آپ کو میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ غائب کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا، قضاء علی الغائب جائز نہیں. جس کے خلاف بھی قاضی نے فیصلہ کرنا ہے اس کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک چور غائب ہے، تو جو قاضی نے فیصلہ کیا ہے وہ صرف اس حاضر چور کے خلاف ہے، غائب کے خلاف فیصلہ ہی نہیں. یوں سمجھو اس اکیلے چور نے ہی چوری کی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وجہ قولہ الاخری، اور امام صاحب کے آخری قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الغیبت تمنع ثبوت السرقۃ علی الغائب، کہ ایک چور کا غائب ہونا یہ اس غائب کے خلاف چوری کے ثبوت سے مانع ہے، اس غائب کی چوری ثابت نہیں ہوئی بھائی. فیبقا معدوماً، تو لہذا اس کا فعل معدوم رہا، یوں سمجھیں گے گویا اس نے چوری کی ہی نہیں بھائی. والمعدوم لا یورث الشبہۃ، اور وہ چیز جو معدوم ہو وہ شبہ پیدا نہیں کرتی. ولا یعتبر توہم حدوث الشبہۃ علی ما مر، یہاں سے امام صاحب کے پہلے قول کا جواب دے رہے ہیں. امام صاحب کا پہلا قول کیا تھا کہ اگر ایک چور غائب ہے تو دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حاضر ہوتا اور کہہ دیتا کہ یہ میرا مال ہے، تو اس کی وجہ سے شبہ آ جاتا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر وہ موجود ہوتا اور یہ کہہ دیتا پھر شبہ نے آنا تھا، لیکن اس وقت جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو شبہ بھی نہیں ہے، شبہ کا صرف ایک احتمال ہے، شبہ کا صرف وہم ہوتا ہے. تو شبہ تو معتبر ہے، شبہ کا احتمال یا شبہ کا وہم تو معتبر نہیں ہے بھائی. تو یہ مانا ہے ولا یعتبر توہم حدوث الشبہۃ علی ما مر، ولا یعتبر اور معتبر نہیں ہے توہم حدوث الشبہۃ شبہ پیدا ہونے کا وہم، علی ما مر اس وجہ سے جو بات گزر گئی کہ شبہ معتبر ہے شبہ تو شبہ معتبر نہیں ہے. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے ولا یعتبر توہم حدوث الشبہۃ، اور شبہ کے پیدا ہونے کا وہم جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، علامہ مرہ اس وجہ سے جو بات گزر گئی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی، حل ہو گیا. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.